ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कला शासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीना स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के सत्संकल्प से स्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में अभी विशेष कार्यक्रम है उपनिषद ज्ञान यज्ञ बृहदारण्यक उपनिषद ज्ञान यज्ञ। यह प्रस्थान त्रय ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत है, श्रुति प्रस्थान में है। श्रुति प्रस्थान में द्वादश उपनिषद है, दस उपनिषद है। दस उपनिषद में से अभी प्रातः बृहदारण्यक उपनिषद, शाम को प्रातः चांदोग्य उपनिषद और सायंकाल में बृहदारण्यक उपनिषद। उद्गीत उपासना का प्रारंभ हुआ, उद्गीत ओम इति तदक्षरम उद्गीतम उपासित प्रारंभ हुआ। अनेक गुणयुक्त उदित ओंकार का उपासना है, उद्गीत है, ओंकार को उद्गीत कहा गया। उद्गीत एक नाम है, शाम का एक भाग का नाम है। शाम का भाग पांच भाग आगे आएगा, सात भाग वाले शाम है, पंचभक्ति के विषाम है। एक तृतीय भाग है उद्गीत, उसी उद्गीत में ओंकार है। उद्गीत के अवयव ओंकार को उद्गीत शब्द से कहा गया। जैसे पट के एक अंश जल गया तो पटो दग्ध, एक अंश में अवयविवाचक शब्द प्रयोग होता है। इसे शाम के अवयव उद्गीत, उद्गीत के एक अवयव ओंकार होने से उसी ओंकार को भी उद्गीत शब्द से कहा गया। उसी ओंकार की उपासना, ओंकार है परब्रह्म का वाचक है, नाम और प्रतीक है। सबसे प्रियतम नाम है ओंकार परब्रह्म का, और अत्यंत समीपस्थ वह है प्रतीक है। उसकी उपासना अभी उद्गीत अक्षर की उपासना है। उद्गीत हो गया ओंकार, उसका जो नाम हुआ उद्गीत, उसे नाम में जो अक्षर है उद्गी और थ, इनके संबंधी उपासना। नाम की पूजा हो तो नामी की भी पूजा हो जाती है। जिनके नाम है, नाम कहने से नाम का भी कोई अर्थ होता है। इस नाम का अर्थ जो विचार करते हैं, और नाम का अर्थ इतने श्रेष्ठ होता है, जिनका ये नाम है वो कितने श्रेष्ठ है। तो नामी की पूजा, नाम की पूजा और स्तुति से हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ उद्गीत है ओंकार, जो ओंकार परब्रह्म का नाम वाचक है और परब्रह्म का प्रतीक है, उसको जो उद्गीत शब्द से कहा गया, उस उद्गीत में जो अक्षर है उसकी उपासना भी कहते हैं। अथ खल उद्गीत अक्षराणि उपासितो उद्गीत इति प्राण एवोत प्राण नहि उत्तिष्ठति वा गीर्वाचो हि गीर इत्याचक्षते अन्नं तमन्ने हीरं सर्वं स्थितम्। अथ खलु, अथ का अनंतर अभी प्रसिद्ध के लिए खलु अभी, उद्गीत अक्षराणि उपासित, उद्गीत इनके अक्षर क्या उपासना करे। उद्गीत जो उपास्य परब्रह्म ओंकार, उसका प्रतीक वाचक है, जिस ओंकार को उद्गीत शब्द से कहा गया, इसी उद्गीत के अक्षर का उपासना करे। अक्षराणि उपासित, उद्गीत अक्षर कहेंगे तो उद्गीत शब्द से ओंकार के अक्षर लेना है क्या, ऐसा शंका हो सकती है। इसलिए ओंकार नहीं, उद्गीत जो नाम है उसका अक्षर उद्गीत इति, इसलिए उद्गीत अक्षराणि उपासित कह करके स्पष्ट कर देते हैं। वो अक्षर कौन है, उद्गीत इति, उद्गीत यही अक्षर है। इसमें उन्हीं के अक्षर की उपासना क्या है, उसमें उद गी थ ऐसा विभाग है। तो उद क्या है, गी क्या है, थ क्या है, श्रुति स्वयं कहती यहां तक तो क्या उद्गीत इति, उद्गी थ यह अक्षर है, इन अक्षर की उपासना, उनका ही चिंतन। जिनके अक्षर इतने विशिष्ट नाम वाला है, इनके अक्षर का इतने उत्कर्ष है, ऐसे नाम वाले जब ओंकार परब्रह्म वो भी कितने श्रेष्ठ है, उनकी पूजा हो जाती है। नाम वाले की भी पूजा उपासना हो जाती, नाम के अक्षर की उपासना करने से। प्राण एव उत, प्राण को क्या है उत, उद्गीत में पहला है उत, उत क्या है प्राण ही उत ही, प्राण क्यों उत हुआ, प्राण न ही उत्तिष्ठति, क्योंकि उत्तिष्ठति खड़ा होता है स्थिर रहता है प्राण के द्वारा, प्राण के नहीं तो कोई खड़ा नहीं हो सकता है नहीं रह सकता है, इसलिए प्राण ही उत ही, प्राण नहीं ही का यस्मात, क्योंकि प्राण से उत्तिष्ठति, सब प्राण के बिना अप्राण हुआ तो खड़ा नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता है, गिर जाता है, लेट जाता है, समाप्त तो हो गया, प्राण से उत्तिष्ठति, इसलिए ऊत हो गया प्राण। वा गीर और ऊत के आगे गी आया, गी ही क्या है वाघ, वाघ गी ही, गी का प्रथमांत कहते हैं गी वाघ, वाघ ही गी, वाघ की क्यों है तो वाच शब्द है वाच, उसको शब्द गीर शब्द से कहते हैं, वाच गी वाचो गिर ही क्या शिक्षते, क्योंकि वाघ को ही गिर शब्द से, गिर है शब्द ऐसे कहते, वाणी को ही कहते गिर, तो वाघ गी हो गया, उद्गीता में के गी है वो गी हो गया, गिर वाणी है, वाच वाघ ही है। और आगे थ रहा अन्नम थम, उद्गीता में थ क्या है अन्नम, अन्न क्यों कैसे थ हुआ, अन्न ही इदम सर्वम स्थितम, अन्न में ही ये सब स्थित है, अन्न में ही आश्रित है, पृथ्वी रूप अन्न में सारे को है, और जितने जो कोई अन्न से ही शरीर इंद्रिय प्राण सब स्थित है, अन्न हो गया थम, तो उद गी थमे प्राण वाग और अन्नम, ये तीन मिलकर उद्गीत हुआ, अन्नम इसे प्रतिष्ठित है। हाँ जैसे तीन कहा उद्गी थ, इसी प्रकार और भी कहेंगे, ऊत का अर्थ और भी अर्थ कहेंगे, गी का अर्थ त का अर्थ कहेंगे, और अर्थ कहते समय कुछ समानता इसमें कही गई, ऊत क्यों है क्यों प्राण से उत्तिष्ठति, गी हो गया वाच को गिर कहते, थम अन्न कहा क्योंकि अन्न में तो स्थित है, ये जैसे कहा गया इसी प्रकार श्रुति में ऊत गी थ के लिए अलग अलग पर्याय में अलग अलग कहेंगे, कुछ ना कुछ समानता है, ऐसे श्रुति में कहा गया कुछ ना कुछ समानता है, इसको लेकर के चिंतन करना है। द्यौरेवऊद अंतरिक्षम गी ही पृथ्वी थम, आदित्यऊद वायु गीर अग्निस्थम, साम वेद ऊद यजुर्वेद गी ऋग्वेद स्थम, दुग्ध अस्मे वाग दोहं यो वाचो दोहो अन्न वन्नाद भवति, ये एतान्येवं विद्वान् उद्गीत अक्षराणि उपासत उद्गीत इति। द्यौरेव ऊत, द्यौ क्या स्वर्ग, ये ऊत है, द्यौरेव ऊत, द्यौ ही ऊत है, ऊत शब्द से पहले कहा था प्राण, अभी द्यौरेव ऊत, द्यौ स्वर्ग है ऊत, स्वर्ग के आगे जितने सब ऊत में आ जाएंगे, द्यौरेव ऊत, और अंतरिक्षम घी ही, द्यौ ऊ इसलिए हुआ स्वर्ग सब के ऊपर है, ऊत का अर्थ ऊर्ध ऊपर है, ऊत ऊपर सबसे है, तो देव हो गया उत, उच्च में स्थित होने से, अंतरिक्ष हो गया गीर, अंतरिक्ष गीर इसलिए हुआ, ये अंतरिक्ष आकाश में सब लोग का कहा आकाश सब को निगल लेता है, गीरनाथ जिसे खाते ही निगल लेते हैं, सब लीन हो जाएंगे आकाश में, तो अंतरिक्ष गिरना लोगों का ग्रहण कर लेता है, अंदर ले लेता है। अब पृथ्वी थम, पृथ्वी हो गया थम, पृथ्वी तो है प्राणियों का स्थान है, पृथ्वी में सब चराचर जीव पर प्राणी है, इसलिए पृथ्वी थम उद्गीत हुआ, द्वितीय पर्याय हो गया। आगे तृतीय पर्याय में कहते आदित्य है उत वायु गीर अग्निस्तम, और आदित्य है उत, आदित्य है ऊपर है, इसलिए ऊर्ध्वन से आदित्य हो गया उत। दूसरे है वायु गी, वायु गी क्यों है, वायु है ये अग्नि आदित्य आदि को निगल लेता है, आगे संवर्ग विद्या में कहेंगे प्राण में पृथ्वी आदि के सब प्राण सब को निगल लेता है, प्राण में सब कुछ लीन हो जाते हैं, संवर्ग उपासना में आएगी, संवर्ग में प्राण में वायु में पृथ्वी जल तेज किस में लीन होंगे, वायु में, वायु में लीन होते, इसी प्राण में सो जाता है, सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रिय लीन हो जाते हैं, तो इसलिए प्राण में सब लीन होते अर्थात वायु सब को निगल लेता है, इसे निगल से गीर हो गया। और अग्निस्थम, अग्निस्थ हुआ क्यों, क्यों कर्म का अवस्थान होता है अग्नि में, जितने वैदिक कर्म सौत कर्म करते यज्ञ आदि अग्नि में आहुति देते हैं देवताओं के उद्देश्य से हवन करते, तो अग्नि साध्य कर्म होने से अग्नि हो गया अथम कर्म का अवस्थान, कर्म की स्थिति अग्नि में। जो आहुत अग्नि होते हैं वो सौत कर्म कर सकते है, अग्नि आधान करना पड़ता है। जात पुत्र कृष्ण केश अग्नि नाद अधीत, गृहस्थाश्रम में जाने के बाद पुत्र हो गया, जात पुत्र, जात पुत्र ऐसे से जात पुत्र, पुत्र होने के बाद कृष्ण केश, बाल भी काला है, कृत्रिम से नहीं, वास्तव काला है, पका नहीं होगा, नहीं तो काला तो अंतिम तक भी काली करते रहेंगे मरने तक। कृष्ण केश अर्थात वृद्ध होने के पहले, बहुत लोग सोचते अभी क्या जल्दीबाजी है, थोड़े दिन के बाद हम साधन भजन करेंगे, बहुत लोग सोचते है ना, कोई लड़का कुछ करता है तो पिता माता समझदार सिखाते, अरे तू तो अभी लड़का है, अभी क्या है, अभी तुम व्यवसाय करो, तो करो भजन साधन बाद में करना। वस्तुतः तो श्रेष्ठ काम पहले करना चाहिए, उसके बाद में रखना चाहिए, बाद में करने के लिए जो श्रेष्ठ है उसको पहले करना चाहिए, शुभ शीघ्रम, जो शुभ कार्य उसको पहले करना चाहिए, जो शुभ नहीं है उसको पीछे रखो। ज्यादातर सबसे श्रेष्ठ कार्य है परमात्मा प्राप्ति के लिए भजन करना, उसको रखते थे बाद में करेंगे। जो कुछ किया जा सकता है युवावस्था में, अभी करने का समय है, धन कमाते हैं तो ज्ञान कमाने के लिए भी समय है, वृद्धावस्था से वृद्धस्ताव चिंता मग्न तहारे ब्रह्मणि को भी न लग्न, भगवान भाषिका ने कहा। वृद्ध होने से चिंता बढ़ती है, सब कहते कि वृद्धावस्था में थोड़ी उम्र होने के बाद हम भजन करेंगे, बहुत लोग जाकर पहुंचते अपने कला शास्त्र में, कहते हमारा 5 साल है पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आ जाएंगे, कि नौकरी कोई करते हैं तो 5 साल पूरा हो गया फिर बाद में 1-2 साल नहीं आए, बाद में क्या हुआ, को सरकार नौकरी चलेगी किन्तु वो दूसरे कंपनी वाले बुला लिया, जैसे कि अपनी इच्छा नहीं थी जबरदस्ती ले लिया, दूसरे काम करने शुरू कर दिया, फिर नहीं होता है ऐसे, कोई कहते वृद्धा अथवा होने के बाद हम आएंगे भजन करेंगे, अर्थात नौकरी जितने करना है हम कर लिया पूरा कर लेंगे, सब कुछ बच्चे पत्नी सबको दे देंगे, फिर हम आ जाएंगे तो यहीं रहेंगे, यहीं रहकर बसना करें, अर्थात हमारे रहने की व्यवस्था भी आपको करना है, धन कमा करके सब छोड़कर विरक्त है ना, सब धन छोड़कर आ जाएंगे, बाद में वृद्धावस्था में क्या करेंगे, अभी बस आपके शरण में रहेंगे, यही अध्ययन करेंगे, यही रहेंगे, अर्थात यही रहना और भोजन यही, तब उसी के लिए भोजन करना है, ऐसे कुछ लोग भी कहते हैं, सब करने के बाद आएंगे तो यही रहेंगे, यही भोजन करेंगे, यही रहेंगे तो यही साधन भोजन करेंगे, वो कुछ नहीं होता है। जब प्राथमिक अवस्था में अभी जितने जिसके पास जो समय है जितने जल्दी हो सकता है उसमें लग जाओ, आगे करेंगे नहीं आगे चिंता बढ़ती है, व्यर्थ है किन्तु होती है चिंता। और इस शास्त्र में क्या भगवान भाष्यकार ने कहा, वृद्ध तावत चिंता मग्न, बूढ़े को बहुत चिंता होती, कहते वृद्धावस्था में लोभ भी बढ़ता है, बिना कारण जाने की तैयारी कुछ लेकर जाना नहीं किन्तु उनको लोभ है, बच्चे पोते खर्च करते तो उनको सहना नहीं होता है, बहुत खर्च करते तो ये डरा दी इतने क्या है, यदि उनको कहेंगे 1,000 तो उनको तो अब लगेगा 1,000 हम तो 10 रूपया में भोजन कर लेते थे, तुम जाकर 1,000 क्या खर्च किया, तो कहे 10 रूपया 5 रूपया 1 रूपया, अब पहले से था, जब आपके अवस्था में भी अभी 10-20 साल के अंदर कितने फर्क हो गया, अब पहले कितने खर्च करते थे अभी कितने खर्च होता है, ऐसे ही बढ़ता है, अब सुनने वाले को लगता है कितने खर्च कर दिया कितने खर्च कर दिया, वृद्धा होता है बसे कहते तुम चिंता नहीं करो बैठो आप क्यों भजन करो, उनका और कुछ नहीं यार इतने खर्च कर दिया इतने खर्च कर दिया, दिन भर बोलते रहेंगे, जो आएगा उसको बोलेंगे इतने रूपया खर्च कर दिया क्या। वृद्धा होने पर चिंता बढ़ती है, इसलिए भजन नहीं होता है पहले करना होता है। इसका शुरू था सप्तम शुरू हुआ था, ये हो गया व्यौरव ऊत अंतरिक्षम घी पृथ्वीतम आदित्यव ऊत, आदित्य ऊद वायु घी, वायु हो गया घी इसलिए हुआ सबको निगल लेता है, अग्निस्तम अग्निसाध्य कर्म, तो अग्निसाध्य के लिए कहा गया जब पुत्र उत्पन्न हो गया बाल काला है तभी तो अग्नि आधान करे, रोज अग्निहोत्र करना है, सायं प्रातः आहुति देना है, जो अग्निहोत्र करता है अग्नि आधान कर रखा है वो गार्हपत्य अग्नि, उस अग्नि से आहुत अग्नि ले करके अग्नि में हवन करना होता है, जो अग्निहोत्र नहीं, अग्नि आधान रोज नहीं करता है, श्रौत कर्म करने के लिए उसका अधिकार नहीं है। ये कभी दिल्ली में हुआ था, कोई ये श्रौत यज्ञ कराए थे, रुपया देने वाले बहुत ही कर्म हो गया, किंतु अब यजमान कौन बनेगा? यजमान के जितना है कि ना अग्निहोत्री होनी चाहिए, रोज अग्निहोत्र हवन करता है तो यजमान बनेगा। अग्निहोत्र करने वाले रोज नहीं है। अब विधिवत कोई ऐसे ही कुछ अग्नि जला के रोज स्वाहा स्वाहा करके आहुत दे दिया, ये अग्निहोत्र नहीं, अधिकार हो विधिवत मंत्र के साथ करता है तो अग्निहोत्री नहीं मिले तो दक्षिणा से कोई आए ब्राह्मण जो अग्निहोत्री वो यजमान बने। रुपया देने वाले सब देखने दृष्टा बनकर सब रहा। अग्निहोत्र करने के लिए जो श्रौत कर्म करने के लिए अधिकारी भी सबके पास नहीं है। अग्निहोत्र करने पर दो सायं प्रातः आहुति देंगे और कुछ संध्या वंदना आदि कर्म करना पड़ता तभी। तो ऐसे अग्नि साध्य होता है कर्म, जितने श्रौत कर्म श्रुति विहित कर्म स्व अग्नि साध्य कर्म, इसलिए अग्नि को थम कहा कि सारे कर्म स्थित है अग्नि में आश्रित है। आगे अभी द्वितीय तृतीय पर्याय होगा चतुर्थ में। साम वेद एव ऊत यजुर्वेदो गी ऋग्वेद स्तम। साम वेद हो गया ऊत, क्योंकि ऋचा में आरूढ़ करके साम का गान करते हैं, साम ऊपर हो गया, ऋचा में साम का आरूढ़ लगा करके बोलते हैं। यजुर्वेद गी, यजुर्वेद हो गया गी, यजुर्वेद गिरी है, यजु से आहुति देते हैं, यजु मंत्र बोलकर अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, वो आहुति हवि को देवता लोग को निगल लेते, ग्रहण कर लेते, ग्रहण करते हैं। वस्तुतः देवता लोग को खाने का नहीं, ग्रहण करते तो ग्रहण हो गया, ग्रहण निगल लेते हैं। अग्नि में यजुर् मंत्र बोलकर के आहुति देते हैं, देवता लोग ग्रहण करते, इसलिए यजुर्वेद हो गया गी। ऋग्वेद थम, ऋग्वेद हो गया थम, इसलिए आरूढ़ होता है साम, साम का आश्रय हो गया ऋचा, ऋचा में साम आरूढ़ होने से साम का आश्रय क्या हुआ? ऋचा, इसलिए थम हुआ। अभी उद्गीत अक्षर उपासना इस प्रकार बताया। तो आगे कहते दुग्धे अस्मय वाक, वाक इनको इनके लिए फल देती है, वाघ ही करता, वाघ देने वाली अस्मय उपासकाय दुग्धे उपासक के लिए दोहन करता है, फल देती है। क्या फल देते है? दोहम, दोह दोहन कर्म फल, यो वाचो दोह, वाह का जो दोह, वाह का दोहकन से वाक या शब्द, ऋग्वेदादि शब्द, ऋग्वेदादि शब्द साध्य फलन, ऋग्वेदादि शब्द शब्द जन जो फल है वो फल को देती है वाघ, स्वयं वाघ फल देती है। उसका फल है वेद अध्ययन करने पर उदात अनुदात सरित को समझने के बाद अपने आप उच्चारण कर सकते हैं। वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में वास करके उच्चारण अनुच्चारण करके पढ़ना पड़ता है, एक एक अक्षर शब्द को पढ़ते पढ़ते जो उदात अनुदात सरित कैसे उच्चारण करना, हाथ हस्त स्वर हस्त कैसे रखना सिखाते हैं। थोड़े थोड़े सीखते सीखते रुद्र आदि जो बोलते हैं सीखते समय कहीं यदि सिखाते ठीक ठीक सिखाने वाले वहां ऐसे ही बच्चे बैठ करके सीखते रटते रटते थोड़े थोड़े करके, फिर एक एक पाठ होने के बाद उसके जटा पाठ घन पाठ ऐसे पाठ आगे पीछे एक अक्षर आगे पीछे करते करते ऐसे करते सारे उपस्थित तो हो जाएगा। बोलते समय सब वर्ण शब्द दिखेगा, उदात अनुदात सरित उन्हें मालूम है, तभी उदात अनुदात के अनुसार हाथ हिलाना पड़ता है। ये नहीं खाली हाथ हिलाने का नहीं, मंत्र बोलते समय उनको दिखता है यहाँ उदात या अनुदात, एक एक अक्षर एक एक शब्द आगे पीछे करते करते थोड़े बोलेंगे आगे थोड़े पीछे आएंगे थोड़े बोलेंगे आगे पीछे, इसे जटापाठ घन पाठ आदि है। एक मंत्र को बोलने के लिए बोलते रहेगा आगे पीछे करेंगे पूरा उनके सामने। कोई व्याकरण अष्टाध्यायी सूत्र कंठस्थ करने के लिए दस सूत्र कंठस्थ करें, दस सूत्र कंठस्थ करने के बाद एक दो तीन चार दस तक गया, आगे दस न आठ सात बोलकर एक तक आओ, ऐसा सुना फिर ऐसा सुना, ऐसे सुनाते सुनाते आगे जाने पर पूरा उपस्थित हो जाता है। फिर कहेंगे अमुक अध्याय का अमुक सूत्र बताओ तो सूत्र उपस्थित हो जाए, इतने कंठस्थ करते। गीता आदि कोई कंठस्थ करते तो एक एक करके कंठस्थ करते, फिर अमुक अध्याय का अमुक श्लोक बोलो बोलेंगे आगे पीछे करते करते, तो ऐसे उपस्थित होना चाहिए। तो वेद पढ़ते समय इसे उच्चारण करके सीखते हैं, सीखते सीखते इतने हो जाता है तो उदात अनुदात उनको साफ सामने उपस्थित हो जाता है, उपस्थित हो जाते तो उसका अनुसार हस्त फैलाना होता है, अभ्यास होता है। तो ये पाठ साधिन उच्चारण फल उसका हुआ, अपने आप उच्चारण कर लेगा। पहले तो सामान्य उच्चारण नहीं कर पाता है, उदात अनुदात स्वर तो और कष्ट होता है। शब्द के उच्चारण करते समय बहुत नियम है, उस नियम के अनुसार उच्चारण करते करते अभ्यास होता है। इसलिए उच्चारण करते समय थोड़े ध्यान से सबके साथ मिल करके उच्चारण करने से कहीं कहीं अपनी त्रुटि का मार्जन हो जाता है। अपने को पता नहीं चलता, सबको लगता हम ठीक बोलते हैं, गलती हो जाती है। इसे सबके साथ मिल करके बोलने से शुद्धि होती है। ऐसे पाठ करते करते उसका जो फल, उसको ये फल मिलता है। और ये तो सामान्य फल है, और मुख्य फल तो ओंकार अक्षर उद्गीत की उपासना है। जिसके नाम के अक्षर की उपासना का फल बताया, ओंकार कितने श्रेष्ठ है उसकी स्तुति के लिए अंतर्गत मध्य मध्य में फल कहते हैं। मुख्य फल है उद्गीत ओंकार उपासना, उस उपासना का फल है हिरण्यगर्भ प्राप्ति आदि। और उपासना फल जो नहीं चाहता है, उपासना का क्या फल होगा? अंतकोण शुद्धि के द्वारा पर ब्रह्म साक्षात्कार है फल, मुख्य तो वही है। सारे कर्म उपासना का वही फल है, केवल बीच में जो फल कहते जिसकी कामना है, कामना का फल प्राप्त करेगा। और जो करता है कामना से भी प्रारंभ करे, कभी कभी काम्य कर्म का आरंभ प्रारंभ कर दिया कामना से, किंतु कर्म करते करते थोड़े अंतकोण शुद्ध होता है, विचार करता है इसका फल क्या मिलेगा, मुझे स्वर्ग जाना है, कितने साल रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसको वापस आना, फिर विचार करेंगे इतने करेंगे तो फिर आएंगे तो फिर कहां जाएंगे, वापस तो आएंगे, वापस आने पर कहां आएंगे, मर जाने के तो आएंगे तो आने पर कोई यहां पूछेगा, जब मर गया 10,000 के वर्ष हो गए, 1,000 क्या, 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद हो, फिर जब वो आए घर में बच्चे भी डरेंगे, पत्नी बच्चे सब कहेंगे बुद्ध बेत आया, डरते रहेंगे, कोई घर में घुसाएगा, अच्छा दूसरे वेश बनाकर आएगा, कौन पूछेगा, कभी यदि कोई मनुष्य बनकर आए, पशु बनकर आए, कोई आएगा कौन उसको पूछेगा, भगाएंगे, तो फिर कहां जाएंगे। तो विचार करते करते उसका विवेक होता है, जब कर्म करता है अंतकोण शुद्ध होता है। देवताओं को हवन करना, शुद्धि सत्वगुण बढ़ने से ही कर्म होता है, इसे जब करते सत्वगुण बढ़ता है, ये विचार आता है इसका क्या फल, उसके बाद कहां जाएंगे, मरने के बाद कहां, फिर कहां जाएंगे, फिर विचार करते इसे करना है कि अभिशत ये जन्म मरण जाना आना ये समाप्त कैसे होगा, फिर विचार करते तो परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का ज्ञान हो सकता है यदि परमात्मा का साक्षात्कार करें। परमात्मा ज्ञान साक्षात्कार का क्या फल, विचार भी बहुत नहीं करते तो भी लगता है परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो कितना अच्छा है। फिर इसके लिए सारे ये उपासना कर्म का जो फल है, फल हमको नहीं चाहे, हमको तो केवल परमात्मा साक्षात्कार हो जाए। ये जब विवेक होता है तो काम्य कर्म आरंभ करके बीच में यदि कामना समाप्त हो गई, वही निष्काम कर्म हो गया। इसलिए पहले कम से कम सकाम से कर्म में लगा देते हैं। कोई कामना करता है तो चलो ये पाठ करो, ये करो, हो जाएगा सब। कोई कहते तो कुछ रोग है, धन का अभाव है, कुछ ना कुछ दुख बताते हैं, बताते तो पाठ करो, पाठ में लगाओ, सकाम से पहले करो। कामना से करते करते भी उसके अंदर विवेक होता है, समझ आता है, कभी निष्काम करने लग जाएगा। किंतु कम से कम शास्त्रीय मार्ग पर चले, जिसको धन अभाव है वो सोता है चोरी करके लूट करके ले आएगा, इसको कहीं तो इस कर्म करो तुमको धन मिल जाएगा, लगा दिया कर्म में स्तोत्र पाठ करो धन मिलेगा, और करेगा तो मिलेगा। ऐसे है कुछ काम करने से, कामना से करने से कुछ फल मिलता है। और यदि लग गया इस शास्त्रीय मार्ग पर चलना शुरू कर दिया तो आगे उसका सुधार हो जाता है। इसलिए यही शास्त्रों का तात्पर्य महापुरुष भी कराते हैं, बाह्य प्रवृत्ति से हटा करके शास्त्रीय मार्ग पर लगाना। शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर कल्याण अवश्य ही होगा, इसलिए अशास्त्रीय मार्ग को छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग पर चलना। ये जो बीज मिश्र कुछ कुछ फल कहते, किसी फल के लिए कोई करे तो कोई बात नहीं, उपासना पहले प्रारंभ करे, और प्रारंभ करने पर अपने आप ही विवेक होता है, फिर वो समझता है। जो कुछ सद्गुण संपन्न नहीं हो, सात्विक भोजन, सत्संग, सत्शास्त्र श्रवण थोड़े प्रारंभ नहीं करे, उसको यदि कहेगा तुम ऐसा करो कामना छोड़ो, नहीं होगा। पहले मार्ग पर लगाए, मार्ग पर लगने के बाद फिर कहने से थोड़े थोड़े फिर विवेक होता है, फिर ग्रहण होता है। इसलिए ब्रह्म विद्या का उपदेश शुरू से नहीं करते हैं, शुरू से करेंगे तो कोई ग्रहण नहीं हो सकता है, और सबको मालूम है तत्वमसी तो सबको मालूम है, बोलना सिखाना नहीं पड़ता है। किन्तु उसका अर्थ क्या है, कैसे ज्ञान होता है, यहाँ भी बड़े अधिकारी को उपदेश करते हैं तो भी बार बार कहना पड़ता है, समय आएगा तो देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, वही बार कहेंगे तत्वमसी फिर कथा फिर मुझे बताइए, फिर वही बताएंगे, बार बार वही तत्वमसी कहेंगे तो नौ बार कहने से क्या होगा, हजार बार भी कहे तो क्या हो जाएगा, क्या विशेष है, तो विशेष है, इसलिए धीरे धीरे करके क्रम से जाना होता है। और इसमें स्पष्ट करेंगे इंद्र को भी कैसे भ्रम हो गया, तो भ्रम हो जाता है, अंतकोण शुद्धि के लिए पहले आवश्यक है, सन्मार्ग में चले इसलिए पहले अंग में फल, अंग अर्थात ओंकार के उपासना है, प्राण उपासना है, वो मुख्य फल तो उद्गीत ओंकार उपासना, किसी मध्य में अक्षर की उपासना, किसी गुण से उपासना, रसतमत्व आपती समृद्धि गुण से उपासना, इसी प्रकार यहां भी अक्षर नाम के अक्षर उद गी थ एक एक को क्या क्या कहा गया, प्रत्येक पर्याय में क्या उद कहा, फिर गया गी क्या था, द्वितीय पर्याय में क्या, तृतीय में क्या, ऐसे मन लगाकर समझे, यदि ये सब दिमाग में रखने के प्रयास करें, उद गी थ पहले क्या कहा गया, द्वितीय क्या, तृतीय में क्या, चतुर्थ पर्याय में क्या, इसको दिमाग में रखे, ये रखने के लिए मन जितने एकाग्रता के बिना नहीं रहेगा, जप में बैठ जाओ एक घंटा कोई पता नहीं किसको पता नहीं चले, आप जप करते हो क्या, विषय चिंतन करते हो, बढ़ जाओ ध्यान में बढ़ जाओ, मन भागता रहता है, किंतु दिमाग में रखकर बताओ, कोई है काल को बताएंगे उद गीत हमें क्या क्या कहा गया, उद क्या है, गी क्या है, नहीं काल को बताना, उद गी अर्थ पहले पर्याय में क्या, द्वितीय पर्याय में क्या, तृतीय में क्या, चतुर्थ में क्या, इसको बता दे, उद पहले क्या कहा गया, गी किसको कहा, अभी नहीं बोलना, गी किसको थ किसको, फिर द्वितीय में उद गी थ, तृतीय में, पूरा करके कहना, ऐसे विचार तब उपासना होती है, तभी पता चलता है मन कितने एकाग्र है, खाली बैठ कर जप करते तो मन भागता रहता है, जप भी चलता रहता है, किन्तु ये दिमाग में रखने के लिए पूरा सामने रखना पड़ेगा, एक एक देख विचार करके मन लगाओ, तब देखो मन कितने एकाग्र होता है, इसलिए हम कहते श्लोक याद कराने लगा देते, श्लोक जब कंठस्थ करेगा मन इधर उधर भागेगा तो श्लोक कंठस्थ होगा नहीं, पूरा लगा करके एक एक श्लोक, एक पाद दूसरा पाद तृतीय पाद, फिर तैयार हो गया फिर बोलते समय भूल जाते हैं, ये है उपासना। अभी यह क्या फल बता दिया, आगे अन्नवान अन्नाद भवती ये एतानि एवं विद्वान उदित अक्षराणि उपास्त उद्गीत इति, अन्नवान अन्नाद भवती, अन्नवान का तो बहुत अन्न वाला होता है, जिसके पास अन्न बहुत ही है दूसरे को दे सकता है, अन्न नहीं तो अन्न कैसे देगा, इसलिए अन्नवान पहले सब ऐसे करते थे, बहुत अन्न हमारे पास रहे अथवा उसका साधन रहे जो हम अन्य को अन्नदान कर सके, कोई अतिथि आए तो हम इसको भोजन दे सके, और कोई ऐसा करते आगे आएगा तो अन्न दान के लिए बहुत स्थान में मकान बना करके सब व्यवस्था करते, तो हमारे अन्न सब रास्ता में जा रहे अभी भी कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा के समय जाते हैं तो रास्ता में कैसे खिलाते हैं, विभिन्न स्थान में ढेर के जहां पानी पीना पानी नहीं मिला कुछ नहीं मिला वो लोग क्या लगा करके बैठ रहे बुला बुला करके खिलाते हैं, अमरनाथ यात्रा में जाते हैं तो लोग भक्त लोग जा करके वहां रहते हैं, रह करके कम्बला दे देते सोने के लिए, जितने पास अपने हो रुपया भी क्या हो, वस्तु के बिना क्या चलेगा, रुपया करोड़ों के रुपया लेकर जाओ तो कम्बल भी देते हैं सोने के लिए, रहने की व्यवस्था है जहां व्यवस्था अभी दोनों अन्य लोग करते, और भोजन भी देते हैं विभिन्न प्रकार भोजन खिलाते अभी भी करते ऐसा बहुत बहुत स्थान में, तो ऐसे प्राचीन परम्परा है विभिन्न स्थान में स्थान बना करके तीर्थ यात्रा अथवा कोई भी हो कोई भी भूखे हो पहुंच गया उसको भोजन मिल जाए, तो इसलिए अन्नवान भवती मतलब बड़ा फल है कि अन्न जिसके पास है, जिसके पास है वो दे सकता है, जिसके पास नहीं वो कैसे दे जाएगा, इसे उपासना करेगा तो उसके पास ये सामर्थ्य होता अन्नवान भवती। और एक अन्नाद भवती, अन्नाद अन्नम अतीत अन्नाद भोजन कर सकता है, भोजन कर सकता है सब तो भोजन करते है, किन्तु अन्नाद भवती अन्न खा सकता है अर्थात अग्नि दीप्त अग्नि भोजन खाकर पचा सकता है, बहुत भोजन खाकर पचा नहीं सकता तो खा नहीं सकते, तो खाते समय बड़ा कठिन है, बहुत खिलाएंगे अपने खाते समय ये खाएंगे आधे रोटी खाएंगे ये नहीं खाना वो नहीं खाना कोई सब्जी खाएंगे तो चटनी जैसे इतने सब्जी लगकर थोड़ा खाएंगे, कोई खा नहीं पाते है, कोई खा करके हजन। तो ये भी है कि पुण्यकर्म का फल है, जो अन्न खा करके पचा लेता है ये पुण्यकर्म का फल है। इसलिए किसको भोजन खिलाते समय यदि अधिक खाता है तो बहुत देखो पुण्यकर्म का फल उसको खिलाओ। अधिक कोई कोई लोग बहुत खा लेते हैं, खा सकते हैं, आप इतने खा नहीं सकते हो, तो आप में इतने आपका सामर्थ्य नहीं, इतने नहीं खाने का, वो खा सकता है तो खिलाओ। तो अन्नवान बहुत, ये कर्म उपासना का फल हुआ, अन्नाद दीप्त अग्नि होता है, जो खाता है पचा लेता है। और कभी कोई खा लिया, थोड़े कुछ खा लिया परेशानी, तो क्या होगा, भोजन बनाए खा लिया, दूसरे दिन फिर भूखा रहा, शाम को नहीं खाया, परेशानी, फिर जितने भोजन का उससे ज्यादा फिर औषध खाओ, यही होता है। इसलिए अन्नवान अन्नाद बहुत ये फल हुआ। ये तानी एवं विद्वान ऐसा समझ करके, उद गी थ को क्या क्या, उद क्या गी क्या थ समझ करके जो उपासना करता है, उद्गीत अक्षराणी उपास्ते उद्गीत इति अथ खलु आशी समृद्धि रूप शरणानी तुपासित येन सामनास्तो संशात साम उपधावेत। अभी फिर हुई उद्गीत उपासना संबंधी है। अथ खलु आशी, आशी इच्छा, विषय की इच्छा कर, कुछ इच्छा करते, आशी समृद्धि ही, समृद्धि है सम्यक रिधि, जो कामना करते काम्य वस्तु की प्राप्ति समृद्धि जैसे हो जाए, जो चाहते हो सम्यक वृद्धि, वृद्धि प्राप्त हो जाए, इच्छा करते हैं बहुत प्राप्त नहीं होता है तो भी इच्छा करते रहते हैं। लोग बहुत चाहता है मिल जाए, इदम में से आद, इदम में से आद, इदम में से आद, कहीं उत्कर्ष देखा हमको भी मिल जाए चाहते हैं, किन्तु होता नहीं, जितने प्रारंभ में इतना होता है। पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म का फल मिलेगा, खाली फल चाहने से फल नहीं मिलता है। पाप कर्म पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानव, न पाप फलम इच्छन्ति, पापम कुर्वन्ति यत्न सह नित्य सह। पुण्य कर्म के फल सब चाहते हैं, पुण्य कर्म का फल क्या है, सुख, सुख साधन, ये प्राप्ति संपत्ति सब पुण्य कर्म का फल। कहीं यदि सुख, सुख साधन है, संपत्ति है, कुछ उत्कर्ष है, ये पुण्य कर्म का फल है, सब चाहते हमको ही मिल जाए इधम से आदम, किन्तु पुण्य करना नहीं चाहते। उनके किसके पास दिखता है तो वो पुण्य कर्म उन्होंने किया था उनके पास है, इसलिए कहीं उत्कर्ष दे करके थोड़ा सा द्वेष नहीं होना चाहिए। उनके कर्म के फल उनके पास आया, किसको यदि अधिक मिल गया, समान स्तर में कोई है, कोई बहुत आगे बढ़ गया, धन समृद्धि बहुत, ख्याति बहुत, विद्या किसी के पास बहुत आ गई, वो पुण्य कर्म का फल है। बहुत लोग में द्वेष करते, ये तो हमारे सामने था, हमारे पीछे था, आगे बढ़ गया, द्वेष करने से क्या होगा, उसका कर्म पुण्य कर्म, पुण्य कर्म का फल सब चाहते हैं किंतु पुण्य नहीं करते हैं। और पाप फल को नहीं चाहता है, पाप कर्म का फल क्या है, दुख, दुख साधना, निंदा, ये सब रोग कोई नहीं चाहता है, किंतु पाप करते रहते, पाप करेगा तो पाप कर्म फल भोगना पड़ेगा। अब यदि दुख मिलता है, दुख का कारण क्या है, अपने क्या हुआ पाप। अभी यदि आपको दुख नहीं चाहिए, पाप कर्म का फल नहीं चाहिए, तो कम से कम अभी तो पाप कर्म करना बंद करो, फिर पाप करेंगे और दूसरे द्वेष करेंगे और दूसरे की निंदा करेंगे, हमको दुख मिला, अपने पाप कर्म का फल भोगते समय उसकी निंदा कर, उसने हमको दुख दिया, उसने हमको दुख दिया, वो ऐसा हमको कह दिया, दूसरे क्या कह दिया, तुम्हारे पाप कर्म का फल उसको कहलाया, जो कहता है पाप करता है वो फल भोगे, तुमको दुख मिला, जो व्यक्ति तुमको दुख देता है क्यों तुमको दुख दिया, तुमको क्यों कष्ट मिला, तुम्हारे पाप कर्म का फल है, पाप कर्म के फल भुगते समय दूसरे को दोष देना बड़ा सरल हो जाता है, दूसरे को दोष नहीं दे करके समझ लो मेरे कर्म का फल मुझे मिला। और आपके कर्म का फल जो आता है, बताया था ईश्वर दूत भेजते हैं, ईश्वर किस रूप से दूत भेज, दूत किस रूप से आता है, दुख बन करके इष्ट वियोगजम दुखम यच्चानिष्ट समन्वयात तद्धि दूतं हरेर्ज्ञेयम् दुखम विस्मरणम हरे। दुख कैसे होता है, इष्ट वियोगजम दुखम, जो हमको इष्ट है उसको कोई ले लिया तो दुख होगा, या हम चाहते कोई ले लिया तो दुख, अरे कहां चले गया, इष्ट वियोगजम दुखम, कोई वस्तु हो, धन हो, कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, इष्ट के वियोग से दुख होता है। और दुख होता है यच्चानिष्ट समन्वयात, अनिष्ट की प्राप्ति से दुख होता है, ये दो ही है, इष्ट के वियोग से अनिष्ट की प्राप्ति से दुख होता है। ये तो दुख तो होता है, सबको होता है। ये कहते उसको दुख नहीं कहो। तद्धि दूतं हरिर्ज्ञेयम्, दुख आपको जो आता है ये दुख दुख नहीं, ये तो भगवान का दूत है। तद्धि दूतं, वो दूत है। किसके दूत है? हरे भगवान विष्णु हरि आपके पास दूत भेजते हैं। तद्धि दूतं हरिर्ज्ञेयम्, भगवान दूत क्यों भेजते हैं? सावधान कराने के लिए। अच्छा, भगवान का दूत आकर पहुंचता है, पूछता है हमको बेटी कहां, मैं उनके पास जाऊंगा। कोई बता दे इधर चल जाओ, कोई बता उधर चल जाओ। वो फिर ढूंढता है कहां जाएंगे। दूत आया, भगवान ने भेजा है। कोई व्यक्ति कहा आप कहां जाए ना, उनके पास जाना चाहते हो, चलो मैं लेकर के, और साथ में आकर के पहुंचा दिया। जब भगवान के दूत को साथ में ला करके आपके पास पहुंचा दिया, भगवान के दूत आपके पास आए, जो व्यक्ति आप उसको ले करके आपके पास पहुंचा दिया, वो आपका उपकार के है, अपकार के है, बोलो। सो हम जानते थे, आ नहीं करते। भगवान के दूत आ रहा है, भगवान किसको भेजा? कोई तो कहता इधर जाओ इधर जाओ, वो कोई व्यक्ति कहा अपने काम छोड़ करके, वो साथ में आकर के पहुंचा दिया, जाओ यही इनके। तो जो आया है दूत उसका भी सत्कार करो, जो दूत को लेकर के पहुंचा उसको भी सम्मान करो। तो भगवान ने दूत भेजा है, जो दूत भेजा है तो दुख आया दूत, उसका सत्कार करो, भगवान का दूत समझ के सत्कार करो, स्वीकार करो, आइए। और जो पहुंचाया है वो आपका उपकार के, अर्थात जो दुख आपको मिलने में निमित्त हुआ, जिस निमित्त बनने से आपको कोई ना कोई निमित्त हो जाता है, और निमित्त बन गया तो वो भी आपका उपकार कहे, क्योंकि ईश्वर के दूत को लेकर पहुंचा दिया। इसे उसका द्वेष नहीं करो, निंदा नहीं करो, तभी परमात्मा प्रीत होंगे। ईश्वर भगवान ने किसको भेजा, आपने किसको भेजा? दूसरे व्यक्ति उसका तिरस्कार कर दिया, आपको कैसे लगे, अरे मैं किसी व्यक्ति को भेजा? तो उसके बात नहीं सुनी, उसको भगा दिया। भगवान किसको भेजा? अब भेजा जिसको, यदि आप उसको सत्कार नहीं करे, तिरस्कार करेंगे, भगवान को क्या लगेगा? इसे उसका सत्कार कर स्वीकार करो। वह आपके बंधु आया, वह आकर आपको सावधान कराता है। तद्धि दूतम हरेर गेयम, जब अभी दुख मिलने से दुख को क्या कहना चाहिए? भगवान के दूत। अभी कहते यदि उसको दूत कहें तो दुख शब्द का कहां प्रयोग करेंगे? दुखम विस्मरण हरे है, विस्मरण हरे, विस्मरण यही दुख है। जब परमात्मा को भूल जाते हैं, आत्मस्वरूप को भूल करके देहादि में अहम बुद्धि करते संसार में, तभी दुख होता है। यदि परमात्मा का स्मरण निरंतर चले, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, दुख थोड़े से भी नहीं, न वित्ती दुख मानो अभी। यह कर्म फल भोगना होता है, तो कर्म फल है जो जिसके पास उत्कर्ष है, पुण्य कर्म का फल है, और इसलिए जहां जैसे उत्कर्ष है तो समझे पुण्य कर्म का फल। तो अन्नवान अन्नाद होना ये पुण्य कर्म का फल है, और पुण्य कर्म का फल जब प्राप्त होता है, वो अन्नपान है तो अन्नदान कर सकता है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं हो क्या कर सकता है, और अन्नाद होता है तो दीप्त अग्नि होता है, अग्नि खा करके पचा सकता है। इसे कोई यदि अधिक खाता है उसके ऐसे उसका अपमान नहीं करे, उसको खुश होकर खिलाए, नहीं खिलाए तो कोई बात नहीं, किन्तु अपमान नहीं करे, ठीक है, खा सकता है, खाता है। और कोई परिश्रम करने वाले खा सकते, पचा सकते, पसंद करते, जो परिश्रम करेंगे खाते वो अच्छा है, वो पुण्य कर्म का फल है, इतने मानना है पुण्य कर्म का फल। आज यदि योगाभ्यास करके कम खा कर कोई रह जाता है, अच्छी बात है, किन्तु कोई खा कर पचा लेता है तो निंदनीय नहीं है। इसलिए ये पुण्य कर्म का फल का अन्नवान अन्नाद भवति, जैसे उपासना करता है। कुछ लोग नहीं जान करके कोई खाता है तो उसको हंसी मजाक करते, कितने खाता है, ठीक है, खाता है तो खाकर पचा सकता है, तुम खाकर पचा सकाओ, पकाओ, तुमको पचाने के सामर्थ्य नहीं, तो कोई खाकर पचाए तो तुमसे कुछ गुण तो उसके पास है, उसके पास कुछ है सामर्थ्य, वो खाकर पचा सकता है, आप नहीं पचा सकते हो, पचन नहीं होता, जीर्ण नहीं होता है। तो ये कहा गया इच्छा की प्राप्ति, ये उपासना कैसे करने, आशी समृद्धि, समृद्धि सम्यक वृद्धि, जो कामना करता है वो प्राप्त हो जाए। और उपसरणानी, उपासनानी का तो उसके पास जाकर ध्यान करने योग्य देय, इसी प्रकार उपासना करे, ओंकार उद्गीत उपासना करते समय ये गुण चिंतन करे, फल प्राप्त होता है, समृद्धि होती है, ध्येय है, ओंकार इसी प्रकार उपासना करें। ये न सामना स्तुष्यन स्यात तत्साम उपधावेत, जब साम गान करके विशेष आगे स्तुति करेगा, स्तुष्यन अभी स्तुति नहीं आगे करेगा, तो पहले जिस साम से स्तुति करना है उद्गाता पहले उस साम की स्तुति करे। जो मंत्र जप करते, मंत्र बोलते, श्लोक बोलते, स्तोत्र पाठ करते, जिस स्तोत्र के द्वारा पाठ करके स्तुति करना है पहले स्तोत्र की भी पूजा है। शाम गान करके स्तुति करनी है तो शाम का विशेष की पहले स्तुति करे, उसके पास जाकर के उसकी उत्पत्ति, शाम की उत्पत्ति कैसे हुई, शाम का क्या स्वरूप है, उसका चिंतन करे। कोई हम पाठ करते मंत्र व जप करते है तो मंत्र के आचार्य कौन है, ऋषि कौन है, दृष्टा कौन है, इनका चिंतन करके पहले उनका ही सम्मान कर पूजा करे। मंत्र दृष्टा ऋषि व मंत्र दृष्टार, मंत्र का दर्शन ज्ञान जिनको होता है वो ऋषि होते हैं। जो मंत्र है, मंत्र का कोई दृष्टा है, उसमें कोई छंद है, कोई साम है, ये स्वर है, इसी विषय का चिंतन करे, उसके बाद मंत्र जप करे। पहले हम कहते जिस साम से स्तुति करना है पहले साम का चिंतन करे, उसकी उत्पत्ति आदि क्या है। यस्याम ऋचिताम ऋचम यदार्श्यम तम ऋषिं यान देवताम अभिष्टोष्यन स्यातां देवताम उपधावेत। यस्याम ऋचि, शाम को जिस ऋचा में श्लोक में बोल करके बोलना है, ऋचा श्लोक में आरोह करके आरूढ़ करके शाम गान किया जाता है, तो ऋचा जिस ऋचा में शाम का आरूढ़ कर बोलना है, ऋचा का भी चिंतन कर ध्यान करें। यदार्श्यम तम ऋषि, जो हम स्तोत्र है जी आर्ष्य जित ऋषि का है, जिन ऋषियों के द्वारा यह है उस ऋषि का भी चिंतन कर ध्यान करे। मंत्र के दृष्टा होते ऋषि, ऋषि का भी ध्यान चिंतन करे। यान देवताम अभिष्टस्यं स्यात, जिस देवता की स्तुति करेंगे वो देवता के पहले चिंतन करे, आगे स्तुति करना है। स्तुति तो बोलते आते है परमात्मा की स्तुति, किन्तु कौन है स्तुत्य, किन की स्तुति हम करेंगे, पहले उनका ध्यान। स्तोत्र पाठ करने के पहले, मंत्र जप करने के पहले, पहले जिनके मंत्र आप जप करते, जिनकी स्तुति करते, पहले उनका चिंतन करे, ध्यान करे। पहले उनका ध्यान करके उनके चरण में बैठे, उनको बुलाए, उनके करके उनके चिंतन करके फिर स्तुति प्रारंभ करे। लोक में किसको कुछ बोलना है तो उनके पास गए, जाकर के कुछ कर रहे तो कुछ जाकर के पूछे उनके, नहीं तो कुछ काम कुछ कर रहे आप कुछ न कुछ बोल दिया और सुन नहीं पाएंगे। फिर थोड़ा अनुमति लेकर हम कुछ बोलना चाहते, थोड़े अभिमुख करके फिर बोलना होता है। जिस देवताओं को आप मंत्र जप स्तोत्र पाठ कर स्तुति करने, पहले देवताओं को के पास गए, प्रार्थना की, फिर अभिमुख हो गए, फिर स्तुति प्रारंभ करो। ये होता है क्रम, देवताओं की स्तुति करना है तो इसे बोलने लगे पहले देवताओं का थोड़ा ध्यान करे, यही प्रार्थना करे तो देवता आपके अभिमुख हो गए। फिर क्रम से मर्यादा है, किसके पास जाकर कुछ बोलना है तो जाकर बोलने लगा, ऐसा नहीं कुछ करे तो थोड़ा देखे फिर बोले, किस में पूछना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, कहे बैठे नम्रता से प्रारण करे। तो देवताओं की स्तुति करना है तो इसी प्रकार देवताओं के पहले ध्यान करे। ताम देवताम उपधावेद, ये न छंद सा स्तुष्यंशा तछंद उपधावेद, ये न स्तोमे न स्तुष्य मनुष्या तम स्तोम उपधावेद। और जिस छंद से गायत्री आदि छंद है, मंत्र आदि में छंद रहता है, श्लोक पाठ करते, गीता में छंद, अनुष्ठु छंद, गायत्री छंद, अलग अलग छंद है। छंद क्या है, इसी छंद का भी उपधावे, जिसकी भी स्तुति करे उपधावे दिखा तो उसके पास जाए, उसके जाकर उसका चिंतन करे, उसकी उत्पत्ति आदि कैसे, थोड़ा ध्यान करे, उसका ध्यान करे। ये न स्तोमे न सोच्य मनस्यात, स्तोम होता है कुछ स्तोत्र का समूह, तो उस स्तोत्रों का भी चिंतन करे। स्तोम उपधावेत, उस जो स्तोत्र है उस स्तोत्र क्या है, किस प्रकार है, किसने लिखा है, किस ऋषि के द्वारा, ऐसा चिंतन करके फिर आगे स्तुति करना है। यान दिशाम अभिष्टस्यंस्या ताम दिशम उपधावेत, और दिशा के भी जिस दिशा की स्तुति करना है, दिशा में किस दिशा में कोई देवता है, देवता भी दिशा किस दिशा में है, ऐसा भी चिंतन करके जिस दिशा में स्तुति करना उसी दिशा का भी ध्यान करे। ताम दिशम उपधावेत, दिशा का अधिष्ठात्री देवता कौन है, इस दिशा में कौन है, ये थोड़ा चिंतन करें। सारे सर्वत्र सारे देवता है, किस दिशा में कौन अधिष्ठाती देवता, कौन कहा मालिक है, किधर कहीं जाना है, उधर भी किस मंदिर में जाना है, मंदिर में जाते समय वहां का भी कौन है मालिक, कौन पूजक, उनकी अनुमति लेकर के जाना होता है। जिस मंदिर में गए वहां का कोई पूजक रक्षक होते हैं, पूजक रक्षक है, उनकी मर्यादा पालन करके उनकी अनुमति लेकर उनकी भी स्तुति करके प्रणाम करके जाना होता है। अपने जितने बड़े हो जाए वहां का वो अधिकारी वहां मालिक है, रक्षा करने वाले कोई है वो भी अधिकारी है, कोई बड़े बड़े स्थान में कोई सामने खड़ा है वो तो नौकर है किंतु वो अधिकारी है, रास्ता है, आप अनुमति पत्र दो पूछो अनुमति लेकर जाओ, उसके बिना नहीं होगा। तो जितने बड़ा हो तो रुक देगा कौन हो कहां जाना, गेट पर कोई रहते ना, रहते तो कोई भी जाने पर वो रुकेगा, कौन है मालूम है तो छोड़ेगा, नहीं तो पूछेगा कौन है, देखा तुम्हारा प्रमाण पत्र, तुम कौन है क्या है। तो इसलिए सब स्थान में से करके मर्यादा पालन करके आगे जाना होता है, जहां का जिस दिशा में जो है अधिष्ठाती देवता रक्षक पालक कौन कहा है सबका चिंतन करके, हमारे स्तुत्य कहाँ है उन चिंतन कर उनके पास जाना, अर्थात तो मन से उनका चिंतन करना, उनके पास पहुंच गए अथवा मन सामने है ऐसा रह करके भी स्तुति पाठ करे। आत्मनमंत उपसृत्य स्तु वीत काम ध्यान प्रमत्व अभ्यासो यदस्मै स काम समृद्धेत यत कामस्तु वितेति यत कामस्तु वितेति। अंत में आत्मान उपसृत्य स्तु वीत, जो पूजा करते हैं संकल्प करते हैं अपना नाम भी लेते हैं, ब्राह्मण आगे कुछ कर्म करके पहले अपने तिलक धारण करता है, शिखा बंधन करता है, अपने शुद्धि करता है, काय शुद्धि आसन से सब करे, अपने तिलक पहले धारण कर गया, सब पहले अपने तैयार होकर के पूजा करना है, पूजा करेंगे भगवान का स्नान करना है, आप पहले स्नान करना चाहिए या पहले भगवान को स्नान कराना चाहिए कोई सोचे भगवान बड़ा है पहले उनको खिलाएंगे उसके बाद हम खाएंगे, वो तो ठीक है, स्नान कराते समय कहीं उनको पहले स्नान कराएंगे बाद में, पहले स्नान करो, भगवान की तिलक लगाना है, कुछ करना है पहले स्नान शुद्ध वस्त्र तिलक करो सब अपने करो उसके बाद मंदिर में जाओ। तो इसे अंत आत्मान अंत तो उपस्थितस्तु भी तो फिर अपने नाम गोत्र आदि को लेकर के मैं कौन हूं क्या गोत्र है अपना क्या, ये सब गोत्र आदि क्या भी ज्ञान होना आवश्यक होता है, कभी कभी मालूम नहीं होता है पंडित उपस्थित गोत्र बोलो नहीं देखे अमुको गोत्र हम लोग अमुको गोत्र अमुको तो कहा गया उसका गोत्र का नाम लेने के लिए वो नहीं जानता है ये कहीं अमुको गोत्र हम अब नाम मालूम तो क्या करेंगे कुछ ना कुछ गोत्र कह देते तो अपना गोत्र नाम आदि को लेकर के स्तुति करे। कामम ध्यायन और जो इच्छा करते हो काम विषय उसका भी जो जिस फल से करता है उसी फल का भी ध्यान करे क्या मुझे चाहिए कामम ध्यान संकल्प करते समय फल भी कथन करते हैं और जिसको फल नहीं चाहिए उस समय निर्णय करे स्तुति करने के पहले हमको कुछ नहीं चाहिए प्रमाद नहीं उस समय भी ध्यान रखे हमको कुछ नहीं चाहिए कुछ करते समय कर लिया तो इच्छा हो जाती कुछ मिल जाए इच्छा तो स्वाभाविक हो जाती है किंतु उसमें कुछ सत्कर्म करते हैं तो आरंभ से लेकर के मध्य में अंत में हमेशा ही ध्यान रहे कोई फल की इच्छा नहीं हो हमको कुछ नहीं चाहिए लक्ष्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति वो ध्यान में रहे हमेशा ही ध्यान हम कुछ नहीं चाहिए परमात्मा प्राप्ति कहीं कुछ उत्कर्ष होने पर मन में इच्छा हो जाती हमको मिल जाए किन्तु सावधान रहे ये हमको नहीं चाहिए हम एक चाहते परमात्मा की प्राप्ति विवेचन करें अन्य समय बैठ करके भी विचार करें ये समय कितने दिन चले गए ये जीवन और कितने दिन है कितने दिन रहना है और क्या करना है क्या लेकर जाना है हमारी संपत्ति क्या है जो संपत्ति लेकर जा सकते हैं वो संपत्ति को इकट्ठी करना है जो संपत्ति को छोड़ जाए वो संपत्ति जितने कर लिया अभी जो संपत्ति अपनी संपत्ति है उसको इकट्ठी करो संपत्ति अपनी है जो हमारे साथ जाएगा जिसको हम नहीं ले सके जिसका उपयोग हम नहीं कर सके वो हमारी संपत्ति है जिसका उपयोग हम नहीं कर सके दूसरे पास बहुत गाड़ी है हमें पैदल जाना पड़ता है दूसरे पास बड़े बड़े मकान है हमको रहने की जगह नहीं वो संपत्ति हमारी है जो हमारे काम में नहीं आए वो हमारी संपत्ति नहीं है इसी प्रकार हमारे काम में जो नहीं आएगा आगे वो हमारी क्या संपत्ति है चले गए तो गए वो संपत्ति हमारे काम में नहीं आए वो हमारी संपत्ति नहीं हमारी संपत्ति आपकी संपत्ति हुई जो आपका आगे काम देगा इसलिए देखना हम आगे हमको कौन काम देगा जो धर्म आप कर दो पुण्य कर्म कर दो साधन भजन किया वही आपकी संपत्ति है उसको इकट्ठी करना है इस अन्य समय विचार करके हमेशा ही यही विचार करके हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना, क्या प्राप्त करना, क्या करना, ये भी थोड़े विचार करे। विचार नहीं होने पर ऐसे प्रवाह में घूमते फिरते भागते फिरते समय चला जाता है। विचार करने पर ही सन्मार्ग में चलना होता है। प्रतिक्षण यही होता है, प्रारंभ होता है विवेक। विवेक पहले अंतकोण शुद्ध होने पर विवेचन करके प्रति समय में कहते हंस दूध और पानी मिला हुआ दूध की पी लेता है। सन्यासी को कहते परमहंस। परमहंस क्या है? वो तो दूध पानी का भेद करता है, ये आत्मा अनात्मा का विवेचन करते ही। सारे प्रपंच दिखता है, बहुत उत्कर्ष होने पर भी दिखता है क्या है। स्वप्नवत उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बड़े सरल शब्द से कहा, ये वेदांत का रहस्य है। सारे जगत स्वप्न है, स्वप्न जैसे मिथ्या है, और स्वप्न मिथ्या प्रपंच में क्या उत्कर्ष अपकर्ष दे करके हमें उसमें नष्ट करना। किसी उत्कर्ष स्वप्न में कभी राजा बनेंगे, सम्राट बनेंगे, कभी भिखमंगा बनेंगे, जगने के बाद किस दिन का सपना आपका अच्छा लगा, उठने के बाद क्या फल मिला। सम्राट बनकर जगे, भिखमंगा बनकर जगे, जगने के बाद क्या फल, हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार सपन प्रपंच सोच करके विचार करना है, विवेचन करना है। यही विवेक का पहले प्रारंभ होता है। साधन चतुर्थ होने के लिए विवेक पहले हो तभी वैराग्य होता है। वैराग्य नहीं होने का कारण क्या है? संसार से वैराग्य चाहिए, अत्यंत वैराग्य वत समाधि। वैराग्य अधिक हो तो समाधि, समाहित से दृढ़ प्रबोध। भगवान भाष्यकार कहते अत्यंत वैराग्य हो तो समाहित होगा, समाहित होने पर ही ज्ञान दृढ़ होता है। वैराग्य अत्यंत चाहिए। क्यों नहीं होता है? ये सत असत विवेचन नहीं होता है। मिथ्या सुनने पर भी मिथ्या तो बुद्धि नहीं होती है, मिथ्या कैसे संभव है ये विचार नहीं कर पाते। विचार बार बार करके मिथ्या तो बुद्धि दृढ़ करनी है। मिथ्या तो बुद्धि प्रपंच में दृढ़ हो जाए तो वैराग्य होगा। वो मिथ्या तो बुद्धि दृढ़ करने के लिए विवेचन करना पड़ता है। शास्त्र श्रवण करते है, उसके बाद तर्क शास्त्र में भी है, उसी तर्क से मनन करना पड़ता है। और बार बार विवेचन करके दृढ़ करके बैठा है। कहीं जाना है, आपको पूछते हो रास्ता बता दो, वो रास्ता बता दिया। रास्ता सुनते समय आपको ध्यान रखना कहाँ से कहाँ जाना, तभी आप गाड़ी चलाते तो भी कहाँ जाना जाकर के लक्ष्य में पहुंचना। उसके समय जैसे मन लगा कर कहाँ जाना आगे निश्चय करके चलना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन में अभी चल रहे, बैठे, भगवान ने दिया आपके शरीर दिया, इस यात्रा करने के लिए बैठे। कहाँ जाना है निश्चय करके चलना है, नहीं जान करके जो चलता रहता है भटकता है। इसे आगे आगे का देख करके हमारा कहाँ लक्ष्य है, कहाँ जाना सोच करके और प्रतिक्षण उसमें समझ करके चलना है। अध्ययन जो चाहते उसका भी मन में ध्यान करे। अप्रमत्त प्रमाद रहित, मंत्र जप हो, स्तोत्र पाठ हो, कुछ गान करते उसमें प्रमाद नहीं करे। नियम रखा इतने पढ़ना है, समय का जल्दीबाजी कर पढ़कर खत्म कर चलो, ऐसा नहीं। ऐसे होता है कभी जल्दी कर पढ़ा छोटी क्या छोटी क्या, ऐसा नहीं। श्रद्धा के साथ उच्चारण स्पष्ट करके समय दे करके, यदि नहीं हो पाता है कम करो बाद में करो, अशुद्ध करके पूरा करके छोड़ देना, ऐसा नहीं। ये नियम किसको नियम दिखाना है? नियम अपने नियम कर दिया, पाठ कर लिया, ऐसे कुछ नहीं। जितने पाठ करना है अच्छे प्रेम से श्रद्धा पूर्वक पाठ, जप करते समय भी जितने जप करे से ध्यान पूर्वक बैठ करके परमात्मा का चिंतन कर प्रेम से थोड़ा जप किया भगवान का नाम, उस समय नाम लेते समय उनका चिंतन करे, उनका मैं प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा सोच करके प्रेम से। सब काम तो होता है किन्तु ये थोड़ा भगवान का जप ध्यान पूजा करते समय जल्दीबाजी समय नहीं मिलता है। बाकी के लिए समय तो मिलता है, उसके लिए समय नहीं मिलता है। अभी कितने लोग बताते शादी विवाह, शादी विवाह, रात में 3 बजे सोए, सुबह कितने बजे उठे, ये सब करने के लिए समय मिलता है। सबके पास समय है किन्तु कभी इसे देर तक सब विचार करे, कभी प्रातःकाल जग जाए, उसके लिए बड़ा कठिन होता है। तो ये थोड़ा सा अभ्यास करके ऐसे चलना पड़ता है। पूजा पाठ करते समय उसमें महत्व बुद्धि हो, तत्परता हो, इसमें श्रुति कहती अप्रमत्त प्रमाद रहित हो। प्रमाद हो जाता है, प्रमाद नहीं होना चाहिए। अभ्यास हो यद अस्मि स काम समृद्धियत, तो क्या लाभ होगा? अभ्यास कहते शीघ्र ही, यद अस्मि स काम समृद्धियत, जो चाहता है शीघ्र ही उसको फिर फल मिल जाएगा। जो चाहता है इसे करने पर अवश्य ही फल प्राप्त कर लेता है। यत कामस्तुवित इति यत कामस्तुवित, जैसे कामना वाला हो करके स्तुति करता है ऐसे कामना फल उसको मिल जाता है, प्राप्त कर लेता है। और जो निष्काम होकर के स्तुति करता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती। कामना से स्तुति करे तो काम में फल, और जो स्तुति करते समय कामना रहित होकर स्तुति करे तो परमात्मा की प्रीति, परमात्मा के अनुग्रह होता है। परमात्मा के अनुग्रह से ईश्वर अनुग्रह आदिशा पुंसाम अद्वैत वासना, तभी अनुग्रह से जिज्ञासा होती है। सवन्ना शर्म धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवित पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। अपने वर्णाश्रम धर्म करने से हरितोषणात् परमात्मा प्रीत होते हैं। अपने करते हुए ठीक ठीक पालन करते हैं, संध्या वंदन थोड़ी जप ध्यान पूजा पाठ कुछ करते हैं तो हरितोषणात् परमात्मा प्रीत होते, संतुष्ट होते, तभी साधन चतुष्टय होता है, विवेक वैराग्यादि तभी होता है। परमात्मा की कृपा के बिना, उनके संतोष के बिना नहीं होता है। इसे जो कुछ करते समय श्रद्धा पूर्वक प्रेम से समय दे करके अप्रमत्त होकर करे ध्यान पूर्वक, तब ईश्वर कृपा से सन्मार्ग में प्रवृत्ति होती है। जो उसमें प्रमाद हो जाता है आगे प्रगति नहीं होती है। बहुत लोग प्रारंभ करते फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसे समय चला जाता है। ओम इतिदक्षर मुद्गीतम उपासित ओम इति उद्गायती तस्य उपव्याख्यानम। अभी पहले प्रारंभ किया था, अभी यहाँ कहते हुई जो प्रारंभ में ओम इतिदक्षर मुद्गीतम उपासित पहले कहा था, बीच में अभी अन्य विभिन्न प्रकार कहते हैं तो ये उपासना छोड़ करके अन्य कोई उपासना शुरू हो गया नहीं समझना, वही उपासना चल रहा है। विभिन्न गुण के साथ उद्गीत का उपासना वही चल रहा है। ओम इति उद्गायती, उद्गान करता तो ओम कह करके प्रारंभ करता है, ओम ऐसे उद्गीत उपासना करे। तस्य उपव्याख्यान पहले प्रारंभ किया था, उसका उपव्याख्यान समीप कथनम, अक्षर ब्रह्म है कैसे उपासना करना है, क्या फल है, क्या गुण है, ये सब बताया। अमृत अभय गुण विशिष्ट उकार का उपासना। अब यहां फिर प्रारंभ करते अमृत फल की प्राप्ति कैसे होगी उपासना के लिए। देवा वै मृत्युर्भ्यतस्त्री विद्यां प्राविशंस्ते छंदोभिरच्छादयन्यदेभिश्चंदोभिरच्छादयन्तश्चंदसांछंदस्त्वम्। देवा वै मृत्युर्भ्यतः, देवता लोग सब मृत्यु होता है मारक मानने वाला, मारक कोई हमको नष्ट कर देगा, उसे डरते हुए सब लोग डरते हैं मृत्यु से, और मृत्यु कोई देने वाला उसे भी डरते हैं, मारक है मृत्यु देने वाला, सब डरते हुए कम से कम मृत्यु हो जाए तो जमराज सुनते ही डरते हैं, और कोई मानने आता है उसे डरते हैं। देवता भी मृत्यु से डरते हुए डरकर क्या करते, त्रयीं विद्यां प्राविशन, त्रयी विद्या में वेद त्रय में प्रवेश हो गई। डरते मृत्यु से क्या रक्षा कौन करेगा, वेद त्रय तीन वेद में प्रवेश हो गई। वेद त्रय में प्रवेश हो गया क्या अर्थ है, वेद में प्रवेश होना अर्थ वेद भीत कर्म में प्रविष्ट हो गई। वेद भीत कर्म में प्रवेश का अर्थ वेद भीत कर्म अनुष्ठान करने के लग गए। मृत्यु से डरते तो समझते किसी प्रकार मृत्यु से हमारी रक्षा होगी। मृत्यु से रक्षा प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया वैदिक कर्म प्रारंभ कर लिया देवता लोगों ने, और प्रारंभ करके सोते इससे मृत्यु से हम बच जाएंगे। छंदो विते छंदोवीर अच्छादयन, वो क्या जो कुछ छंद मंत्र आदि है वेद कर्म में तो कुछ उपयोग होता है, जो कर्म में उपयोग तो नहीं होता ऐसा कुछ मंत्र है जप आदि होम आदि करते हुए अपने को ढाक दिया, जिससे डरते हैं अपने को छिपा के छिप जाते हैं, कोई आता है विरोधी शत्रु आता है वो छिप जाता है। देवता लोगों ने किया कर्म प्रविष्ट कर हमें प्रविष्ट हो गई, और संत मंत्र जब से अपने ढाक दिया ऊपर से कपड़ा से ढाक देते ना, कपड़ा से ढाक दिया तो बाहर क्या दिखेगा, जब मंत्र ध्यान आदि तो मंत्र कर्म करने वैदिक कर्म करने लगे, और जप मंत्र आदि जप ध्यान आदि करने लगे, जप हम आदि करते हुए ढाक दिया। जो देवता लोगों ने ये छंद मंत्र के द्वारा अपने को ढाक दिया इसलिए उनका नाम छंद हो गया आच्छादयन, आच्छादन कर लिया, आंग पूर्वक छद धातु आच्छादन कर लिया, इसे छंद का नाम छंद हो गया, मंत्र का नाम छंद। छंदस्तम छंद क्यों नाम हुआ? क्योंकि देवता लोगों ने इन मंत्रों के द्वारा अपने को ढाक दिया था, आच्छादन कर लिया था, ढाक आच्छादन, जैसे वस्त्र के द्वारा टेबल आच्छादन ढका गया, इन मंत्र के अपने को ढाक दिया था, इसलिए ये मंत्र का नाम हो गया छंद। आच्छादन तद छंदसाम छंदस्तम, इसलिए उनको छंद नाम हुआ, मंत्र का नाम हो गया छादना छंदस्तम। आच्छादन ढकने से छंद हो गया। वो ढकने के बाद भी जब मारक है कोई ढक जाता है, ढक देता है, तो भी देखता है कहाँ गया। तो मारक देखा तानु तत्र मृत्यु यथा मत्स्य मुदके परिपश्ये देवम पर्यपश्य दृचि सामनी यजुषी तेन विदित्वा रुद्ध्वा ऋचः सामनो यजुषः स्वरमेव प्राविशन। तान उनको देवताओं को देख लिया मारक, कैसे देख लिया? यथा मत्स्य मुदके परिपश्ये, कोई लोग मत्स्य मछली को पकड़ना चाहते हैं पानी में है, तो पानी में होने पर वो देख लिया ये पानी में मच्छर बड़े बड़े मछली है और समझ लिया इसको हम किस प्रकार पकड़ लेंगे, उपाय जान लिया। जान लिया क्या है? वो क्या बड़ी शादी कहते कुछ डाल करके पकड़ लेते हैं, अथवा देखते कम पानी उसको बंद करो पानी को निकाल देंगे तो मछली को पकड़ लेंगे। किसी प्रकार समझ लिया कि हमारा साध्य जाल उठा बिछा करके मच्छर को पकड़ लेंगे, वो देख लिया मतलब समझ लिया इसको हम पकड़ लेंगे। और वो जब देख लेते समझ लेते कि हमको मारने वाला देखा, वो फिर अपनी रक्षा करते हैं। अब देखो कहीं मच्छर आदि काटते हैं और उसको पकड़ना चाहो, वो अच्छी तरह से पुस्तक से लिपटते इधर काटते हैं और देख लिया पकड़ने के लिए बहुत जल्दी चला जाता है, वो भी देखते हमको ही पकड़ने आया। हम उसको पकड़ना चाहते वो अपने खून चूसते, किन्तु उसको पकड़ लेंगे निकाल कर छोड़ेंगे या कोई मारना चाहते वो भाग जाते हैं। वो भी जानते हमको पकड़ने वाला है, ये छोटे छोटे भी वो भी देखते कौन हमारा आया शत्रु। मक्खी आदि बढ़ते हैं, कहीं मक्खी को पकड़ने प्रयास करो नहीं पकड़ते, तो इतने वो बैठे थोड़ा ही करो कितने जल्दी उड़ जाते हैं, पूरा देखते रहते हैं। तो ये भी देख लिए, जैसे मत्स्य भी समझ लेते हैं, ये मत्स्य जैसे उनको देख लिया ये उनको पकड़ लेंगे। एवं पर्यपश्यत, इसी प्रकार मृत्यु देवताओं को देख लिया, ये छंद मंत्र से ढक करके कर्म कर रहे, ढाके देख लिया मतलब क्या समझ लिया? तो परिपश्यत कहाँ देखा? ऋचि सामनी यजुषी, ऋ यजुसाम मंत्र है उसमें देख लिया देवता लोगो है। और समझ लिया ये कितने समय रहेंगे, कर्म समाप्त तो हो जाएगा तो उनको मारेंगे। कर्म करना वैदिक कर्म करे, कर्म करेंगे तो कर्म करेंगे ठीक है, कर्म फल भोग लेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो मर्द बताए अब हमारा दिन आ जाए, जय मछली को समझ लिया कि अभी उसको पानी को हटा लेंगे, जाल बिछाएंगे ये पकड़ लेंगे, अपने तैयार हुआ है, मछली देख लिया अभी इसको पकड़ो। इसी प्रकार मारक ने समझ लिया कि अब यह वैदिक कर्म करे, मंत्र जप आदि करके ढक कर बैठे, अब ये कर्म का फल समाप्त हो जाएगा तो अब इसको मार देंगे। अच्छा उतेन विदित्वा, अभी जब कुछ कर्म वैदिक कर्म शुरू किया था देवताओं ने, वैदिक कर्म शुरू करने के कारण वैदिक कर्म से कुछ संस्कृत शुद्ध हो गए, कुछ कर्म करने से अवश्य ही शुद्धि होती है। अभी शुद्ध होने के कारण वो समझ ले मृत्यु अब क्या करना चाहता है, मारक अभी क्या करना चाहता है देवता को पता चल गया। देवता वो तो कर्म कर रहे थे और मारक उनको देख लिया, जब देख लिया वो भी समझ लिए हमको देख लिया मारक, अभी मारक क्या करना चाहता है, कर्म समाप्त होने पर हमको पकड़ेगा मारेगा, देवता को पता चल गया। क्यों पता चल गया? थोड़े वैदिक कर्म करने से शुद्धि हो गई। जो कुछ कर्म सत्कर्म करता है तो कुछ उसका लाभ होता है, आपको दिखता नहीं, सत्कर्म कुछ करने पर उसका प्रभाव संस्कार अंतकरण होता ही है। पाप कर्म निश्चित निंदित कर्म कुछ करता है तो उसका प्रभाव होता है, रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है, सत्वगुण बढ़ गया, देवता लोगों ने समझ लिया शुद्ध होने के कारण मृत्यु क्या करना चाहते समझ लिए। समझ करके देखा ये कर्म में हम रहेंगे ये मृत्यु हमको छोड़ने वाला नहीं, तो देख लिया। इसी प्रकार जो कीड़े मकोड़े देखते अभी हमको देख लिया वो भाग जाते हैं, ये देखा कि देवता लोगों ने हमको ये देख लिया मृत्यु हमको खत्म कर लिया, यहां से हमको इससे रक्षा नहीं मिलेगी। तो क्या क्या ऊर्ध्वा तेन विदित्वा, ऊर्ध्वा विद समझ करके ऊपर उठ गए, किसे? ऋच साम्न यजुस ऋ यजुसाम मुखे साध्य कर्म वेद भी तो कर्म में ढके थे, कर्म कर रहे थे, देखा कि अभी मारक हमको देख लिया और वो कुछ मार देगा, इसके द्वारा हमारी रक्षा नहीं हो सकती, ये कर्म छोड़कर ऊपर निकलिए, ऊपर उठ गए, क्योंकि ये मार लेगा, कर्म करते करते समाप्त हो जाएगा, मार लेगा, तो उसे ऊपर उठ गए। ऊपर उठ कहां से ऊपर उठ गए, ऋच सामने योजस ऋ यज साम वेद, वेद भी तो कर्म से ऊपर उठ गए। ऊपर उठने से क्या होगा, फिर क्या क्या स्वरम एवं प्राविशन, स्वर में प्रविष्ट हो गई, स्वर कौन है, इस स्वर शब्द से ओंकार उपासना करने लगी। कर्म करते करते देखा कि कर्म से समाप्त होने पर ये मारक मरेगा, तो फिर स्वर ओंकार उपासना करने, स्वर ओंकार, ओंकार में प्रविष्ट हो गई, अर्थात ओंकार उपासना करने लगे। और इसमें एव दिया, स्वरम एव प्राविशन, स्वरम एव कहन से ओंकार उपासना में ही, कर्म उपासना दोनों नहीं, कर्म से छोड़ करके ओंकार उपासना में ही लग गए। देखिए कर्म से रक्षा नहीं मिलेगी, कर्म के अपेक्षा उपासना, उपासना से आगे अधिक ज्ञान, कर्म में रक्षा नहीं होगी, कर्म करते करते भी कर्म समाप्त होता है, मार्ग आता है, जन्म मरण आदि व्याधि की निवृत्ति कर्म से नहीं होती है। जितने कर्म करने पर भी देखा ये नहीं होगा, फिर उपासना, उपासना में बहुत प्रकार उपासना है, सबसे श्रेष्ठ ओंकार उपासना में प्रविष्ट हो गई। अभी उसको ओंकार को स्वर शब्द से कहा गया, ओंकार को स्वर शब्द से कैसे कहा गया, यदा वारिचम आपनोत्यो मिते वातिश्वरते एवं साम एवं यजुरेव ओ स्वरो यदि तदक्षरम एतद अमृतम अभयम तत्प्रविश देवा अमृता अभया अभवन। यदा वै वा का है, वै प्रसिद्ध है, ऋचम आपनोति ऋचा ऋचा का उच्चारण करता है, ओम इते वतीश्वरति ऋचा मंत्र जब बोलता है कोई ऋतिगी पहले ओम कहकर प्रारंभ करता है, ऋचा ऋचा को जो प्राप्त करता है उच्चारण करता है ओम इते वतीश्वरति, ओम कहकर अधिक स्वर से उच्चारण करता है, अतिश्वरति जोर से ओम कहकर मंत्र पाठ करते, केवल ऋचा नहीं एवं साम एवं यजु, इस प्रकार साम गान करता है तो ओम कहकर शुरू करता है, यजु मंत्र भी बोलते समय ओम कहकर शुरू करता है, री यजु साम आदि मंत्र जो बोलते ओम कहकर प्रारंभ करते, ओम इत अति अधिक स्वर करके प्रारंभ करते, इसे ओम का नाम हो गया स्वर, ओम इत अति स्वर थी, ओम इसे कहकर अधिक स्वर से बोलता है फिर मंत्र बोलता है, इसलिए ओम का नाम हुआ स्वर, इसलिए यजुर एवं एव उस स्वरो, इसलिए ही यह स्वर हो गया कौन, यह दे तद अक्षरम जो यह अक्षर, जो अक्षर चल रहा है ओम इत तद उद्गितम अक्षरम ओम, ओम इत अक्षरम हो गया स्वर, क्योंकि इसे ओम कहकर जोर से उच्चारण करता है इसलिए स्वर हो गया यह दे अक्षरम। और यह जो अक्षर ओम है ए तद अमृतम अभयम, यही अमृत है और अभय, इसी की उपासना से ये ओंकार अमृत है अभय, अमृत अभय गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना करना है, ये अमृत है मृत्यु से रक्षा करने वाले, अभय है भय से रक्षा करने वाले, संसार भय से रक्षा करने वाले, मृत्यु भय से रक्षा करने वाले, मृत्यु से रक्षा करने वाले, ये ओंकार है अमृतम अभयम। तत्प्रविश्य ऐसे ओंकार में प्रविष्ट करके, प्रवेशन का अर्थ उसकी उपासना करके, ओंकार उपासना करके जैसे गुण उसका है अमृत अभय गुण विशिष्ट ओंकार, जैसे गुण विशिष्ट उपासना कर, विशिष्ट का की उपासना करेंगे ऐसे गुणों का फल प्राप्ति, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, जिस गुण युक्त उपास की उपासना करते ऐसे गुण फल प्राप्त होता है। तो अभय अमृत गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना करने से देवता भी अभय हो गए, अमृत हो गए, देव अमृता अभया भवन, देव अमृत अभय हो गई, देवता लोग ने इसे उपासना करके अमृत अभय हो गए, हमको क्या मिलेगा, इसलिए उपासना बताए उन्होंने इसे किया था, आप भी इसे उपासना करो तो भी आप भी अमृत अभय हो जाओगे। स एतद एवं विद्वान अक्षरम प्रणुत्ति एतदेवाक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवा तद अमृतो भवति। ये कहते देवताओं ने जैसे किया था ये इसलिए कहते देवता ने की उपासना, ऐसे महादेवता इतने श्रेष्ठ होकर कि जो कर्म उपासना की थी कितने उत्कृष्ट है ये, इसलिए हम भी ऐसे करें, इसलिए कहते स य एतद एवं विद्वान। इसी प्रकार एतद अक्षर को एवं विद्वान इसे समझ करके अमृत अवय गुण वाला है अक्षर, अमृत अवय गुण वाला अक्षर इसको जान करके उपासना करता है। प्रणौति, प्रणौति का तो स्तुति करता है, नू स्तुति अर्थ की, यहाँ स्तुति क्या है ओंकार अक्षर की स्तुति क्या है उपासना, यहाँ स्तुति करता है मतलब उपासना चिंतन ध्यान करता है, स्तुति उपासना स्तुति ऐसे ही उपासना करता है। तो उपासना करते करते इतने उपासना करे तो ध्येय स्वरूप ध्याता ध्यान त्रिपुटी का भान नहीं हो, ध्येय का चिंतन करते तद्रूप हो जाए, प्रमाद रहित होकर ध्यान चिंतन करे। प्रारंभ में आरंभ करते समय कठिन होता है, धीरे धीरे आगे आगे करते करते वो ध्यान में प्रकर्ष होता है, उन्नति प्रगति होती है। जो ध्यान करता है स्वयं देखता अनुभव करता है, पहले बढ़ते समय मन कितने भागता है, फिर थोड़ा मन को लगाया, धीरे धीरे अभ्यास करने पर मन एकाग्र होता है, फिर एकाग्र होने पर स्वयं अनुभव करता है, ध्यान में धीरे धीरे प्रगति होती है। फिर ऐसे ध्यान करते करते कभी कभी अपने आप थोड़े समय देहभान नहीं हुआ रह गया, फिर जब देहभान नहीं हुआ रह गया तो दिखता है कुछ लाभ हुआ और करता है, फिर सब छोड़कर करता है। बाहर चिंतन जितने अधिक होता है इतने विक्षेप होता है ध्यान में, और ध्यान करने के परमात्मा चिंतन करना है तो बाह्य व्यर्थ चिंतन कम करना पड़ता है। व्यर्थ चिंतन व्यर्थ व्यवहार बहुत करते करते पहले से अनादिकाल से अंतकर्ण में बहुत संस्कार है, अभी कुछ नहीं भी करे इतने संस्कार है, कभी कुछ संस्कार के कारण मन इधर उधर भागता है, वासना भी बहुत है, उत्कट रूप से वासना नहीं दिखती, सूक्ष्म रूप से वासना है, कोई विषय प्राप्त हो सुन लिया समझ लिया सुन लिया तो मन उधर चल जाता है। बहुत समझदार अच्छे साधक भी कहीं चमत्कार सिद्धि आदि का नाम सुनते सिद्धि प्राप्ति होती तो इच्छा होती हमको सिद्धि मिल जाए, ये इसलिए मार्ग में योग आदि मार्ग में तांत्रिक साधना में कुछ सिद्धि मिलती है, जिस सिद्धि में फंस जाते बहुत अच्छे अच्छे साधक, बड़े बड़े सामान्य बहुत लोग में ऐसा है चमत्कार देखते तो उसमें बड़ा मन लग जाता है, उधर भागते हैं, समते मुमुक्षु रास्ता पर चलते हैं कहीं सिद्धि चमत्कार देखा फिर उधर भाग जाते हैं, लगता है सिद्धि हमको भी कुछ मिल जाए, कुछ नहीं है सिद्धि चमत्कार से कुछ भी दिखा दे। अब यदि खाली ऐसे हाथ करके फेंकेंगे पानी, पानी फेंकते रहे आधा घंटे तक क्या मिलेगा, पानी के अभाव है क्या, अब इतने खाली करेंगे तो यहां बैठने की जगह नहीं मिलेगा खाली इतने फेंको पानी, कहेंगे कि बाबा आया बस एक घंटा तक तो पानी फेंकता है, आते कहां से पानी आया, फेंकते रहते पानी एक घंटा तो जित पानी फेंकते रहे सबको क्या मिल जाएगा, किंतु उसमें लोग आकृष्ट होकर इतने भीड़ हो जाएंगे बड़ा कठिन हो जाएगा, यही लोग उसे होता क्या लाभ क्या होता है, अच्छा वो पानी का हमारे ऊपर डालते डाल देने से क्या हो जाएगा, डाल देने से कुछ हो जाएगा उसे नहीं होता, ऐसे ही मैजिशियन जैसे दिखाता है कुछ सिद्धि के द्वारा करते पानी डाल दिया, पानी पवित्र हो पवित्र हो डाल देने से क्या होता है, कोई थोड़े चमत्कार के कारण। ये सब जो वेदांत मार्ग में विवेक है विवेचन कर चलता है वो सोचे पहले उसे हमको क्या मिलेगा उससे लाभ क्या होगा, ये हमको भी पानी भी हमारे पर गिर जाए अथवा हमारे पास ये सामर्थ्य भी आ जाए हमें इसे कर दे तो क्या हो जाएगा, सम्मान मिलेगा धन संपत्ति मिलेगी, यही होगा जितने कुछ मिल जाए सम्मान धन संपत्ति, ये मुख्य मार्ग में विरोधी है, ये सब वो यही से झूठा इसमें सुर से दूर हटे, नहीं तो इसे हो जाता है अपने मार्ग छोड़कर चल जाते, इसे विवेचन करके हाँ ठीक रहेगा हमें चलता है चलना चाहिए। तो ओंकार उपासना करके अभय अमृत हो गए, बाकी कोई भी है नहीं है अभय अमृत देने वाले, और जो उपासना करता है वो भी अमृत अभय हो जाता है। अमृत अभय होकर क्या करता है, तत् प्रविश्य यद अमृता देवा तद अमृत भवति, और देवत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे राजा के परिवार में कोई व्यक्ति पहुंच गया तो राजा जैसे सुख उसको नहीं मिलता है, वह पहुंच गया तो कुछ थोड़ा मिला किंतु राजा जैसे भोग ऐसे भोग नहीं करता है, किंतु ऐसे उपासना करने वाले देवत्व को प्राप्त करता है तो देवता लोग जो भोग करते हैं ये भी वही भोग करेगा। यहाँ से कोई राजकुल में प्रविष्ट हो जाए तो राजा को जो प्राप्त होता है सब उसको मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है। किंतु यहाँ जो उपासना करके देवत्व को प्राप्त कर लेता है, यदमृता देवा तदमृत भवती, जो अमृत सेवन करते देवता लोग वही अमृत वाला होता है, वह अमृत ही सेवन करता है, बराबर हो जाता है। जो उपासना करके स्वर्ग में जाता है देवत्व को प्राप्त करता है, देवता के साथ समान हो जाता है, वही अमृत प्राप्त करता है, अधिक नहीं कम नहीं बराबर हो जाता है, उनके से बराबर हो जाता है, तो ये अमृत हो जाता है, जन्म मरण को प्राप्त नहीं करता है। किंतु देवत्व को प्राप्त करने मात्र से मरण का अत्यंतिक अभाव नहीं, दीर्घ काल रह जाता है। प्राणादि दृष्टि का विधान किया, उद्गीत उपासना का, उसका उपासना करके अभी प्रणव और उद्गीत, एक प्रणव शब्द है, जो ओंकार को उद्गीत कहा गया इसको प्रणव शब्द से ही कहते हैं। ऋग्वेद प्रणव ही ओंकार को कहते, तो प्रणव उद्गीत एक एक कह करके अभी उपासना करते हैं। अक्षर को उपासना क्या है, उसमें एक अक्षर अद्वितीय अक्षर उसके उपासना की। अब यहाँ कुछ उपासना कहेंगे, अक्षर की जो रश्मि है, प्रकाश है, उसकी रश्मि, सूर्य की रश्मि, रश्मि बहुत है, बहुत रश्मि विशिष्ट ये ध्येय चिंतन करो। यहाँ एक उपासना है पुत्र फल के लिए, प्रसंग वशत बताते हैं, मध्य में थोड़ा बताते हैं, कोई पिता पुत्र को कहते हैं, उद्गीत प्रणव एक है, वही आदित्य है, मैं एक सूर्य उनके चिंतन करके उपासना करने से तुम मेरे एक पुत्र हो, किंतु तुम रश्मि विशिष्ट आदित्य का उपासना करो, तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे। शास्त्र में आया एष्टव्या बहवः पुत्राः बहवः पुत्राः कदा एकोपि गयाम गमिष्यति, बहुत पुत्र होनी चाहिए, पुत्र हो क्या लाभ होगा, कोई कुपुत्र हो जाए तो कोई एक भी पुत्र तो सत्पुत्र हो जाए, कहीं गया में जाकर पिंडदान करे। गया में पिंडदान करने से पितृलोक का उद्धार होता है, बड़े शास्त्र तो प्रमाण है, और अभी भी कभी कभी लोक में प्रमाणित तो होता है, कोई गया में जाकर के पिता पितामह प्रपितामह के लिए पिंडदान करे तो उनके पितृलोक का उद्धार होता है। उसके बाद गया में पिंडदान करने के बाद बद्रीनाथ में जाकर के ब्रह्मो कपाली में पिंडदान करते हैं, और एक गया में एक नाभ गया है उत्कल देश में याजपुर है तीर्थ, वहां भी एक गया है, पाद गया नाभि गया ऐसे कहते हैं, सिर कपाल है ब्रह्म कपाली में, नाभि है बिहार में, और पाद है याजपुर में है क्योंकि वैतरणी नदी में, तो वहां भी पिंडदान करते हैं। बहुत लोग वहां नहीं जाते कि तो गया में यहां पिंडदान करके फिर बद्रीनाथ में पिंडदान करते हैं, तो पिंडदान करने से पितरों का उद्धार होता है। अभी भी देखा जाता है कोई यदि जाता है गया में पिंडदान करते, शास्त्र में आया पितृलोक बड़े प्रसन्न होते हैं, कोई गया में आता है तो सुनकर प्रसन्न होते हैं, जो जाता है कुछ कुछ लोगों का अनुभव हुआ है रास्ता में सब विघ्न दूर होता है, पितृलोक सहाय हो जाते हैं। कोई यदि दाता अस्थि लेकर कहीं जाते विसर्जन करते प्रयाग में और गया में पिंडदान करने जाते हैं, पितृलोक उसको सहायता करते हैं, सहायता करके उसके कर्म होता है, तो पितृलोक बहुत खुश होते हैं। गया में कोई पुत्र पहुंच गया पितृलोक बहुत खुश होते, हमारा पुत्र गया में आ गया, कुछ भी थोड़ा वहां करता है तो बहुत फल प्राप्त होता है। शास्त्र में क्या कदा एक भी गया हम गमी से कोई एक भी गया जाएगा, गया में पिंडदान करते है, इन्होंने किया था भगवान रामचंद्र दशरथ ने पिंड ग्रहण किया था, वो अभी भी स्थान है, तो पिंडदान देकर जब समय हो गया राम भगवान नहीं आ पाए तो देवी माता सीता जी ने पिंडदान किया, सर दशरथ कहते हमको दे दो, हाथ उठाकर मैं कहा हमको दे दो, क्या देंगे, वो रेत के कुछ पिंड बना करके हाथ में दे दिया, उसको ले गया, क्योंकि समय उस पर नहीं आ पाया, तो उसके बाद आने के बाद जो कहते हैं मैं पिंडदान किया, पंडित लोगों ने कहा ये किसे किसे होता, ऐसा नहीं होगा कि आप कौन हो, प्रमाण है क्या साखी, तो प्रमाण से पूछा गया कौन है, ये गाय देखे और ये फल्गुन दी वही साखी और कोई नहीं, किसको पूछेंगे, फल्गुन से पूछा गया तो कुछ नहीं कहा, गो से पूछा गया तो गो भी मना कुछ नहीं कहा क्या, तो वहां के ब्राह्मण भी कोई कुछ उनके तो फिर बाद में उनको स्वयं दशरथा करके पकड़ कर बताया कि पिंडदान किया है और ऐसा किए तो अभिशाप दिया था। फल्गुन नदी में अभी पानी ज्यादा था, सुखा ही रहता है, ऊपर नहीं दिखेगा। और थोड़ा खुदाई करे पानी है, उसे खुदाई करे पानी लेकर पिंडदान सब करते हैं। और गो का इसलिए अभिशाप दिया, गोबर की तो पूजा होती, गोबर तो उत्कृष्ट है, गो का जो मुख है अशुद्ध है। जिस बर्तन में हम भोजन करते उसी बर्तन से गो को खिलाओ ऐसा नहीं है, नियम नहीं, अशुद्ध हो जाता है बर्तन। जो बर्तन में हम थाली में भोजन करते ना उसी बर्तन से गो को नहीं खिलाना चाहिए, गो के मुख अशुद्ध है। उधर तो गोबर अशुद्ध है, गोबर पवित्र है किन्तु मुख अशुद्ध है। इसे जो बर्तन से हम भोजन करते उसी बर्तन से गो को नहीं खिलाते, वो अभिशाप दिया था। ये तो शास्त्र में आया, लोक में दिखा जाता है, कोई कोई अनुभव कर बताते हैं। अभी भी कोई जाता है तो पितृलोक कैसे करते हैं, ये अभी एक साल दो साल के अंदर की बात है। अपने आश्रम में एक ट्रस्टी है, उसके पूछा तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी के लिए पूछा क्या करना है, मैं कहा गया पिंडदान करो फिर बद्रीनाथ में करो। तो गया पिंडदान के बाद बद्रीनाथ गया, जाते समय उसके कोई साथी दोस्त साथ में चला गया जिसका इसमें कोई विश्वास नहीं, थोड़ा हंसी मजाक करता था। बद्रीनाथ में जाकर पिंडदान करने के लिए जब बद्रीनाथ जो भगवान में भोग लगाते हैं उससे अन्न से पिंडदान होता है, तो वहां जो बात हुई पंडित जी सुना, उसके मन में आया चलो हम भी आए तो हम भी कुछ कर ले, अपने पिता माता आदि किसके लिए कुछ कर ले, मन में थोड़ा आ गया। फिर पूछा क्या करना पड़ेगा, बोले कुछ नहीं पंडित गया कोई ज्यादा नहीं, इतने खर्चा बहुत नहीं होता है। गया में पिंडदान करने के जाओ लोग बहुत खर्च करते, खर्चा नहीं होता है, वो डर नहीं है। अब पंडित लोग पीछे पड़ेंगे किन्तु बता दो हम यहाँ से आए, हमारे कौन है, वो ठीक स्थान पर पहुंचा देंगे, कुछ कम रुपया में खर्च होता है, बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। वहां ऐसे बताया पंडित ने कहा कोई चिंता नहीं आपको, आपका गोत्र बता दो हम करा देंगे, और तुम जैसे जो तुम्हारी इच्छा जो दक्षिणा देना वो कोई जबरदस्ती नहीं। तो ये लगा बड़ा अच्छे पंडित है हम, किन्तु उसको गोत्र मालूम नहीं। घर में फोन किया तो हम गोत्र क्या है, वहां घर में बोलते हैं तू गोत्र पहले बाद में बताए तू कहां है बोलो। घर में उनके घर में किसी उसके जो पूछा उसके भाभी किसके शरीर में कोई अशरीर प्रविष्ट होकर के उनकी माता के माता कोई दादी दादी माँ कोई वो बोलती है उसको वो गया है बद्रीनाथ बोलो मेरे लिए कुछ करे, बताए मेरे लिए कुछ करे। तो ये सत्य कहा बद्रीनाथ नहीं बचा उसको बताओ मेरे लिए भी करके आए, वो गया मेरे लिए करे, बोले क्या मेरे लिए करे क्या करना है ना, उसको बोल दे खाली मेरे लिए करने वो कर देगा, वो ब्राह्मण से पूछ करके कर लेगा। तो ये बताए तो बोलता अरे तू बताओ तू गुप्त तो बताए तू कहाँ है ये बोलो, बोला मैं है उसके साथ अजय के साथ आया हूँ बद्रीनाथ में, ना क्या करना है वो कर रहा है वो श्राद्ध कर रहा है मैं भी पिंडदान करना, वो बताया तुम्हारे अमुक के वो अमुक आई थी उसके शरीर में उसने कहा उसके लिए भी करना, अब पंडित से पूछ करके उसके लिए भी कुछ कर देना। तो वो तो पसना पसना हो गया क्या ऐसे हो गया जो विश्वास नहीं करता था, आज आकर पंडित से पूछा, पंडित बोला हाँ बहुत अच्छा है उसका नाम बताओ और किस तरह में क्या है, अब हम उसके लिए भी पिंडदान कर देंगे। तो किसी परिवार में कि आपके परिवार में कोई ऐसे पहले चला गया था कम उम्र में चला गया था, और कोई व्यक्ति अतृप्त है, कोई कोई ऐसा होता है जिसका कोई है ही नहीं, कोई नहीं तो चाहते हमारे लिए कोई कर दे, कोई जाता है तो वो कहते हैं तो हमारे लिए भी थोड़ा कर दो, तो किसी के लिए कर देते। तो जो पंडित लोग पूछते हैं गया में भी आपके परिवार में कोई होगा, आपके पत्नी के भाई के ससुराल में कोई बच्चा कोई मरा कोई ऐसा हो गया उसके निमित्त ही के पिंड दे दो जिसको आप नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते, बहुत बड़े परिवार में कौन कम उम्र में मर गया था कितने जानते नहीं जानते, बहुत बच्चे भी मर जाते हैं आपके ससुराल में उनके पति भाई पत्नी के भाई है, कोई बच्चा मर गया कौन किसको पता है, कहते ऐसे ऐसे कोई होगा किस प्रकार मर गया कोई एक्सीडेंट से कोई अतृप्त होकर किसी प्रकार हो गया उनके लिए भी कुछ पिंड दे दो उनको ही मिल जाता है। तो ये जो प्रमाणित हुआ वो हमारे पास आया था बताया, वो व्यक्ति फिर कहा विश्वास तो नहीं था, जब इसे घटना देखी विश्वास हुआ क्या, और करके आया आने के बाद ऐसे होता है उसमें कुछ पितृलोक कृपा करते इतने उसको लाभ प्रसन्नता हुई आकर हमारे पास कहा बड़े खुश होकर के कुछ कर्म क्या करके मार्ग में चला बहुत उसको लाभ होगा। अंदर कुछ लोग कृपा करते हैं जो अशांति होती है पितृलोक पितर जो रुष्ट होते तो अशांति होती है, जो आजकल मैं बताया था भोजन शुद्ध भोजन नहीं करके पितर को नहीं दे करके देवता को नहीं दे करके लाखों लाखों करोड़ों खर्च कर शादी कराते किन्तु इतने कर्म नहीं कर पाते हैं इसके कारण पितृलोक रुष्ट होते हैं, इससे अशांति होती है। इसलिए विवाह में बहुत असफल हो जाते हैं। ये कर्म यदि ठीक करेंगे तो उनकी कृपा से शांति होती। पितृलोक देवता है, जो पितर अवस्था में थे उनके ज्ञान सीमित था, अभिमान देहाभिमान आदि था, अज्ञान आत्मज्ञान नहीं, किन्तु जानने के बाद जो पितृदेवत्व को प्राप्त कर लेते हैं उनमें बहुत सामर्थ्य है। तो वो सामर्थ्य कभी कभी आकर किसको बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, किस किस के परिवार में आते हैं आकर के बताते हैं, बता करके रक्षा करते हैं। तो वो लोग सद उपदेश देते हैं और रक्षा करते हैं, परिवार की रक्षा, आपकी रक्षा वो करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कैसा रक्षा करते हैं। ये भी कुछ है, प्रमाणित है, भी बहुत प्रमाण भी है। तो ये है, वो करने से वो लोग तृप्त होते हैं। तो ये शास्त्रीय मार्ग इसी प्रकार है, जिस प्रकार करने में लाभ होता है, इसलिए कहा गया बहुत पुत्र हो तो कोई भी एक पुत्र तो गया पहुंच जाएगा, इसे बहुत पुत्र के लिए यहां कहते हैं इस प्रकार। अथ खलु यह उद्गीत स प्रणवो, यह प्रणव स उद्गीत इत्यसो व आदित्य उद्गीत, एस प्रणव ओम इति एस स्वरण इति। जो उद्गीत है वही ऋग वेद में, वही प्रणव है। जो उद्गीत शब्द साम वेद में कहा गया स प्रणव, ऋचि ऋग वेद में प्रणव है, और यह प्रणव स उद्गीत। जो ऋग्वेद में प्रणव वही उद्गीत सामवेद में, दोनों बार कहते हैं। घट मिट्टी है किंतु जितने मिट्टी सब घट नहीं है, घट मिट्टी है और जितने मिट्टी सब घट है क्या, इसलिए थोड़ा घट मिट्टी है किंतु मिट्टी घट नहीं है, समझ में आता है। घट मिट्टी है किंतु मिट्टी घट नहीं। मुकुट सोना है किंतु सोना सब सोना मुकुट है, सोने टुकड़ा दिखा है सोना मुकुट नहीं, मुकुट तो सोना है क्योंकि सोना मुकुट नहीं, ये दोनों में भेद हो जाता है। किन्तु यहां कहते हैं जो उद्गीत साम वेद में वही ऋग वेद में प्रणव कहा गया, ऋग वेद में जो प्रणव कहा गया वही उद्गीत है साम वेद उद्गीत। यदि फिर उद्गीत कौन है, अशुभ आदित्य उद्गीत, जो आदित्य है सूर्य भगवान यही उद्गीत है, ओंकार उपासना का फल रूप है, आदित्य रूप हो जाता है वो उद्गीत है। ऐसा प्रणव और वही प्रणव है, वैसे प्रणव कैसे आदित्य सूर्य कैसे हुआ, ओम इति शरण इति, ओम कह करके उच्चारण करते हुए जाता है सूर्य। जैसे आया था अनुज्ञा अक्षर, कोई कहता है तुम्हारा धन मैं ले लूं, हम मुझे कुछ विद्या उपदेश कर दीजिए, कहते ओम, ओम कहना मतलब अनुमति दे देना, अनुज्ञा अनुमति, इस ओम कह करके अनुमति दे देता है। इसी प्रकार आदित्य भगवान क्या करते हैं, ओम कर जो सूर्य उदय हो जाते हैं और जो जो तुम्हारा कर्म करो सबको अनुमति दे देते हैं। रात के बाद सूर्य उदय होते हैं, जो कर्म करने वाला है सबको अनुमति देते हैं। तो ओम ऐसे कहते हुए जैसे जैसे लोके में ओम कह करके अनुमति देते है, सूर्य भगवान उदय होकर कहते तुम अपना कर्म करो, अपने कर्म कराने के लिए अनुमति देते हैं। तो ओम ऐसे उच्चारण करते हुए जैसे उच्चारण तो नहीं करते, जैसे मनुष्य ओम उच्चारण करके अनुमति दे देता है, इस आदित्य भगवान उदय हो करके अनुमति देते सबको तुम अपना काम अब करो, नित्य कर्म आदि करो, ओम इति उच्चार स्वर्ण उच्चारण जाता है, इसलिए उद्गीत होगा। एतम एवा हम अभ्यागाशिषं तस्मान मम तम एकोसीति ह कौशित ही पुत्रम उवाच रश्मेश तम पर्यावर्तयाद बहवो वे ते भविष्यन्ति इत्यादि दैवतम। क्या इसी जो ओम उद्गीत है इसको मैं अहम अभ्यागाशीषम इस अभिमुख होकर मैं गान किया, उपासना की, उपासना करने से तस्मान मम तम एक हो, जो आदित्य रूप ओम है इसकी उपासना करने से तुम मेरा एक ही, तुम एक हो सी, तुम मेरा एक ही पुत्र हो। इति ह कौशित की पुत्र उवाच, कौशित के नाम है अपने कुशितक का पुत्र होने से उसका नाम बढ़ गया कौशितकी, पुता का नाम है कुशितक, उसका पुत्र कौशितकी अपने पुत्र को कहा तुम एक ही पुत्र हो मैं, क्योंकि एक ही ओंकार उद्गीत सूर्य उसकी उपासना की थी, किंतु तुम क्या करो रश्मेंश त्वम पर्यावर्तयाद, आदित्य के जो रश्मि है उसको आवृत करके उपासना चिंतन करो, रश्मि बहुत ही रश्मि के विशिष्ट आदित्य का उपासना करो, मैं केवल आदित्य उपासना मैंने की थी, तुम रश्मि विशिष्ट आदित्य की उपासना करो, किसलिए बहुवी ते भविष्यन्ति इति तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे इति अधिदेवतम, ये देवता संबंधी उपासना देवता में कहा गया। अर्थात बहुत पुत्र तुम्हारे होंगे, बहुत पुत्र होना पहले भी मानते थे लोग, कोई भाग्यवान कहते थे जिसके पुत्र अधिक है, पुत्र अधिक होना आवश्यक शास्त्र में कहा गया, पुत्र अधिक इष्टवे बहु पुत्र, कोई एक भी सत्पुत्र सन्मार्ग में जाएगा पिंडदान करेगा, और कोई भी एक पुत्र यदि कभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए लाग जाए परमात्मा कुल का उद्धार कर लेता है। ये नहीं कि खाली साधु वेश बनाने में, कोई भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भगवान भक्ति भजन करता है उपासना करता है भक्त बन जाता है हरिभक्त हो जाता है तो कुल का कल्याण कर लेता है, और परमात्मा साक्षात्कार कोई कर लिया कितने कुल का उद्धार कर लेता है। इसलिए ये कहते हैं तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे। अथ अध्यात्मम ये वायम मुख्य प्राणस्तम उद्गितम उपासित ओम इति ये स्वर नेति। अभी देवता में आदित्य उद्गित उपासना, देह में भी उपासना है देह के अंदर। ये वायम मुख्य प्राण तम उद्गितम उपासित, जो मुख्य प्राण है मुख में होने वाला वही उद्गित है उसकी उपासना करे। ये प्राण कैसे उद्गित हुआ, एस ही इति हेसा स्वरन एति, क्योंकि ये भी स्वर करते ही जाता है। वागादि इंद्र की प्रवृत्ति होती है, इंद्र व्यापार करने के लिए प्राण सब को अनुमति देता, जैसे प्राण की अनुमति के बिना प्राण की सम्मति के बिना, प्राण के बिना इंद्रियों का व्यापार नहीं होगा, प्राण की सम्मति सहायता उसके बिना व्यापार नहीं होगा। इसलिए ओम जैसे करके अनुमति देते हैं लोक में, इसी प्रकार प्राण भी सबको अनुमति जैसे देता है प्रवृत्ति के लिए। और मरते समय जैसे वो प्राण ओम इसे करके चले जाता है, कोई शब्द तो नहीं करता है किंतु वो चला जाता है, सबको कहता चलो, सब चलते उसके साथ। इसे उच्चारण जाते समय तो नहीं है, कोई पास में लोग हैं मरते समय कोई उच्चारण करता ऐसा नहीं है, किंतु समय पथे तो नहीं सुनते, किंतु इसे सबको अनुमति दे करके प्रवृत्ति के लिए सकोम कह करके, वो कोई बंदर जाता है तो बच्चे को पकड़ लेता है, बच्चे ऐसे कुछ करता है बच्चे पकड़ लेता है, थोड़ा ऐसे कुछ करना बच्चे खेलता है बंदर है, बंदर जो दौड़ कर जाएगा तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे करता है बच्चे उसको पकड़ लेता है, ऐसे हाथ कुछ लगा संकेत हो फिर जाते हैं। इसी प्रकार प्राण जाते समय सबको लेकर के ओम कह करके, सबको लेकर ओम तो नहीं करता है, ओम जैसे कह करके सब उनको देना प्रभु चलो, सब चलते हैं। इसे प्राण हो गया उद्गित हुआ, स्वरन स्वर हो गया। एतम एवाहम अभ्यागाशिषम तस्मान तमेकोशी कौशित के पुत्र मुच प्राणस्तम भूमानम अभिगायताद बहवो वै मे भविष्यन्ति। इसी प्राण को ही मैं इसकी उपासना की, ऐसे उद्गित मुख्य प्राण है ऐसे उद्गित मान करके उपासना की थी, किंतु इसलिए तुम्हारा तुम मेरे एक पुत्र हो। कौशित के पुत्र कहकर कहा प्राणान तम भूमानम अभिगायताद, भूमानम का तो बहुत तो है, बहुत तो युक्तम प्राण में बहुत तो उसमें है, बहुत तो युक्त मन से ध्यान करो, बहुत भेद गुण वाला प्राण है, मुख्य प्राण का भेद बहुत है, सारे भेद वाले प्राण को मान करके उपासना करो। भूमानम बहुत तो, बहुत तो युक्त प्राण एक नहीं अनेक के भेद वाला है, इसकी उपासना करो। बहवो वै मे भविष्यन्ति, मेरा बहुत पुत्र हो इसी दृष्टि से, भेद दृष्टि करके उपासना करो, तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे। अथ खलु यह उद्गित स प्रणवो, यह प्रणव स उद्गित इति होत्रि सदनाधे वापि दुरुद्गीतम अनुसमाहरति अनुसमाहरति इति। जो उद्गित है सामवेद में वही ऋग्वेद में प्रणव है, और जो ऋग्वेद में प्रणव है वही सामवेद उद्गित है थी, फिर उसको उपसंहार किया। ऐसा जो कर्म जानता है उपासक, होत्रि सदनाधेवापि दुरुद्गीतम अनुसमाहरति इति। होत्रि सदनाद होता का स्थान को तो होत्रि सदन, होता का स्थान क्या, होता स्थान में रह करके कर्म करता है, ऋग्वेद विहित कर्म होता करता है, तीन ऋतिक होते है अध्वर्यु उद्गाता होता, अध्वर्यु यजुर्वेद के ब्राह्मण ऋतिक होते है, यजुर्वेद मंत्र बोलता है ज्ञाता है, और सामवेद के उद्गाता होते हैं, और होता होता है ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद विहित कर्म करने के लिए होता जहां रह कर कर्म करता है उसी कर्म ठीक ठीक करता है तो क्या होता है दूर उद्गीतम अनुसमारधि कोई उद्गाता के द्वारा सामवेद के ऋतु के उद्गाता उद्गाता अपने कर्म करते समय कोई यदि त्रुटि कर दे तो उसको अनुसमाहति उसका ठीक मिला देता है त्रुटि मार्जन कर देता है कौन उद्गाता नहीं होता होता उद्गाता के द्वारा सामवेद ऋतु के द्वारा गया गया कर्म में कोई त्रुटि कर लेता है तो होता ऐसे उपासना करने वाले होता जब प्रण उपासना करता है उसके उपासना सामर्थ्य से उसकी त्रुटि को मार्जन कर लेता है धोत्री सदनाद होता के स्थान में रह करके होता हेवापी दूर उद्गीतम अनुसमारती दूर उद्गीतम दुष्ट उद्गीतम दोष उद्गीतम उद्गान करते समय कहीं दोष हो गया उद्गान सामवेद उद्गान करता है गान करते समय अभी भी बोलते समय कितनी त्रुटि हो जाती है थोड़े प्रमाद होने से त्रुटि मात्रा में हो जाती है श्लोक जानते बोलते समय उच्चारण करते समय गलती हो जाती है तो कर्म करते समय कहीं त्रुटि हो गई तो अपने कर्म में क्षत हो जाता है जैसे चिकित्सा का आकर के कहीं क्षत हो जाता है खट क्या तो उसको देख रहा उसको देख रहे बंद कर रख देता है ठीक हो जाता है जुट जाता है इसी प्रकार ये भी उस अनुसंधान करके दोनों को मिला देता है जोड़ देता है अर्थात क्षत का मार्जन कर लेता है त्रुटि मार्जन हो जाता है अभी सारे फल प्राप्ति के लिए उद्गीत का उपासना के दूसरे कहते हैं सब फल की प्राप्ति ओंकार उपासना से ओंकार श्रेष्ठ है ये तो फल हुआ और जो कुछ फल ओंकार उपासना से प्राप्त हो सकता है और किसी उपासना से प्राप्त नहीं होगा दृष्टि करके उपासना उपासना में भी कितने लगन है कितने तन्मयता है उसके अनुसार फल उपास्य श्रेष्ठ उपासना श्रेष्ठ मंत्र उत्कृष्ट गुरु उत्कृष्ट इतने होने मात्र से फल नहीं उसके बाद अपने कितने क्या करते हम कितने भावना करते ये देखना पड़ता है कोई भी नाम लेकर भगवान का कोई स्तुति करता है कितने भाव से करता है कितने तन्मयता है कितने वैराग्य है कितने भक्ति है ये सब आवश्यक होता है कोई कोई कहता हमारे गुरु बड़े बड़े प्रसिद्ध है गुरु बहुत बड़े प्रसिद्ध हो जाने मात्र से आपको फल नहीं मिलेगा वो बहुत लोग ऐसे सोते हैं उनके पीछे बहुत लोग चले तो उनके पीछे ही भागते हैं लोग जाते हैं उनके बड़ा बहुत लोग होते हैं वो चलो अथवा कोई ऐश्वर्य देख करके जाते हैं उनके ऐश्वर्य देखा वो बहुत बड़े कितने बड़ा कितने सो गए किसके पास गए तो वो तो कहीं से बैठे कुटिया में झोपड़ी में कोई और इनके पास देखो तो कितने बहुत है तो बड़े ऐश्वर्य देख करके लोग उनके पीछे ही भाग जाते हैं ऐश्वर्य उनके पास है तो ऐश्वर्य पुण्य कर्म का फल है ये कोई ज्ञान का प्रमाण नहीं अनुमापक नहीं ऐश्वर्य बहुत हो तो ज्ञान हुआ करके और यदि ज्ञान भी हो ऐश्वर्य भी हो इतने मात्र से इसे गुरु आप मान लिया गुरु को पता नहीं शिष्य क्या करता है शिष्य कब किस करता है शिष्य गुरु के पास मिल भी नहीं सकता है गुरु जब शिष्य बहुत हो जाते हजार करोड़ लाख हो जाएंगे किसको मिलेंगे वो कितने लोग कहते हैं हमारे गुरु तो बहुत ही किन्तु हम कभी उनके पास नहीं जा सकते कोई के मंत्र ऐसे लेते हैं गुरु तो है ही नहीं गुरु तो नहीं दे वो उनके मंत्र रेकर्ड करके रखे रेकर्ड से सुना देंगे उसको लेकर शिष्य बन जाते हैं हजार हजार बैठो रेकर्ड लगा देंगे मंत्र चलेगा अभी मंत्र बोलो बस शिष्य हो गई इतने गुरु किसके मंत्र देंगे यदि हजार दस हजार लोग आएंगे तो कम मंत्र देंगे तो इसे लगा देते सब एक साथ वैसे ये चलता है वो सब नहीं कोई बड़ा हो जाने से कुछ नहीं मंत्र भी अच्छा है इसलिए हमको फल मिल जाएगा कोई कह करके अच्छा मंत्र है करके अपने आप ही करने लगे कोई दूसरे को बता देता हम इतने उदार ओंकार मंत्र दे देते हैं ऐसा नहीं होता है शास्त्र सम्मत होना चाहिए कितने तन्मयता भावना है इसमें आवश्यक रहे जितने जैसे उपासना में तारतम्य तन्मयता त्याग समर्पण इससे फल होता है सामान्य कुछ करता है बहुत कुछ सबर ने बहुत कुछ नहीं दिया किंतु यही बहुत कुछ है अपने आप का समर्पण पूरा जीवन भर परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा और कुछ नहीं चाहिए सब सहन करे तभी होता है त्याग जब पूरा समर्पण होता है तो अपने पास जितने सामर्थ्य है बहुत सब सामर्थ्य से बढ़कर अपना मन ही बड़ा सामर्थ्य है मन ही समर्थ है मन को पूरा अर्पण कर दे मन में विषय चिंतन बहुत होता है सब चिंतन छोड़कर यदि मन को अर्पण कर दिया परमात्मा समर्पण कर दिया तभी शरणागति उसका नाम समर्पण
लोग शरणागति कह देते, हम तो शरणागत है, हम तो समर्पण करते, बड़ा साधन है, किंतु शरणागति शब्द से शरणागति नहीं, शब्द से नहीं, वस्तु तो शरण में आ गए, मन को दे दिया और कोई चिंता नहीं करो, मन उनको दे दिया, मतलब मन का अधिकार किसका अधिकार है, मन में परमात्मा अर्पण कर दिया, तुम्हारा अधिकार नहीं, तो मन को इधर उधर नहीं करो, मन को इधर उधर करते मतलब मन को नहीं दिया, मन को दे दिया मतलब उसमें लगा दिया, उधर नहीं लाना, जो दान किसको करते दे दिया, फिर कहते ये मैंने दिया था पीछे से हमको दे दीजिए, ऐसा होता है या कोई चीज दे दिया फिर क्या दिखा ये ने इसको मैंने दिया था, फिर कभी कहीं हमको दे दो या मैंने दिया, ऐसा नहीं होता, दे दिया मतलब दे दिया उनका हो गया, अब मेरा करके कहना नहीं सोचना नहीं, इसी प्रकार यदि समर्पण करते भक्ति है ये, मन को दे दो पूरा भगवान में लगा दो, और उस मन को फिर लाना नहीं खींचना नहीं, उसमें लगा दो, तभी समर्पण होता है। इसलिए सारे कर्म फल प्राप्ति के लिए उपासना उद्गीत उपासना है। यम एवरी अग्नि श्याम तदेत श्याम ऋच्या दृढ़ श्याम तस्मा ऋच्या दृढ़ श्याम गीयत इति यमेव साग्निरमस्तत् श्याम यमेव ऋक् अग्नि यमेव ऋक् अग्नि श्याम यमेव ऋक् यम पृथ्वी यमेव ऋक् अग्नि श्याम यम का तो पृथ्वी ऋक् है अग्नि श्याम है पृथ्वी में अग्नि है ऋक् में श्याम है तदेतत् एतस्याम ऋचि अद्युरम श्याम इसी ऋचा में श्याम आरूढ़ है पृथ्वी रूप ऋचा में अग्नि रूप श्याम आरूढ़ है पृथ्वी में अग्नि अग्नि जब देखते हैं काष्ठादि युक्त अग्नि देखते हैं ईंधन के बिना अग्नि किसने देखी ईंधन के साथ अग्नि दिखती है काष्ठ हो कोई वायु गैस वायु हो कभी इसमें लोहा में अग्नि लोहे में प्रविष्ट होकर के अग्नि तो पृथ्वी में अग्नि आरूढ़ काष्ठ में अग्नि दिखती है ये पृथ्वी में अग्नि जिस प्रकार आरूढ़ है इस पर ऋचा में श्याम आरूढ़ है तस्मा ऋचि अद्युढ़ श्याम गीयते इसे ऋचा में आरूढ़ करके श्याम का ज्ञान किया जाता है यमेव सा अग्निरमस्त श्याम यमेव सा अग्निरम पृथ्वी हो गया सा अग्नि हो गया अम सा और अम मिलकर श्याम हो गया सा अम पहले कहा था ये अग्नि ऋख और ये श्याम आगे कहते यमेव सा अग्निरम तसाम ये पृथ्वी है सा पृथ्वी स्त्रीलिंग सा अग्नि हो गया अम दोनों मिलकर श्याम हो गया इसे अक्षर उपासना है ये अलग अलग श्याम के लिए कहेंगे इसके आगे विशेष है ब्रह्मसूत्र के ऊपर विचार आता है तो उसकी उपासना कहेंगे अंतरिक्षमेव ऋग्वायु श्याम तदेतस्याम ऋचा दूढ़ श्याम तस्मा ऋचा दूढ़ श्याम गीयते अंतरिक्षमेव सा वायु रमस्त श्याम अंतरिक्षमेव ऋग अंतरिक्ष आकाश हो गया ऋग वायु हो गया श्याम अंतरिक्ष में आकाश में वायु चलता है वायु है तो वायु हो गया श्याम जैसे ऋचा में श्याम है आकाश में वायु है तद एतत एतस्याम ऋचा दूधम श्याम यह ऐसा है ऋचा में आकाश रूप ऋचा में वायु रूप श्याम आरूढ़ है इसलिए ऋचि अदूढ़ श्याम गीयते ऋचा में आरूढ़ श्याम का गान किया जाता है ये श्याम हो गया कैसे अंतरिक्ष में व सा वायु रम अंतरिक्ष आकाश हो गया सा वायु हो गया अम आकाश वायु दोनों मिलकर के श्याम हो गया आगे आएगा ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।